السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ہماری زندگی میں سکون، راحت، خوشیاں، خیریں، کامیابیاں، اس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے نہیں ہے کہ ہم ایسا چاہیں تو ہو جائے، اور ہم ایسا کچھ طریقہ اختیار کریں اور یہ چیز مل جائے، ہماری اپنی ذات سے نہیں یہ چیز ہے. اس چیز کو متاثر کرنے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں، اور اس چیز کو نقصان دینے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. ہماری خوشیاں چھیننے والے حاسد، ہماری صحت کو ڈسنے والے دشمن، اور کینہ پرور جو ہمیں مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہم سے بیٹے چھیننا چاہتے ہیں، بیٹوں کی سمجھیں، عقلیں، شعور، احساس، ادراک چھیننا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہم سے مال چھیننا چاہتے ہیں، اولاد چھیننا چاہتے ہیں، سہولت چھیننا چاہتے ہیں، عافیت چھیننا چاہتے ہیں، ہمیں تہی دامن و تہی دست کر کے گلیوں میں پھروانا چاہتے ہیں، ہماری خوشیوں کے دشمن، ہماری راحتوں کے دشمن، ہمارے سکھ اور سکون کے دشمن. ہمارے پاس ہیں اور واقعتاً ہیں، انوکھی بات ہے، ہمیں نظر نہیں آتے. وہ شیاطین جنات ہیں جس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ مسنون دعاؤں کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، قرآن کے ساتھ، آسمانی اتری ہوئی مسنون دعائیں ان کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے قدم قدم پہ. اس لیے کہ کوئی ایسے دشمن بھی ہیں جو ہمیں ڈسنا چاہتے ہیں، ہمارا سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں. کیونکہ ان شیاطین کو پتہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے راحت کا کوئی سامان نہیں. روز قیامت ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے روگ ہیں اور آگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ پھر ہمیں تجھے جو مل گیا سو مل گیا، ان کو سکون سے کیوں رہنے دے. میٹھا تھا بہت زیادہ، اس کو تھی شوگر، اس نے کیا کیا، اس میٹھے میں تھوک دیا. دیکھا تم نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا تو تم بھی نہیں کھاتے. ہم اپنے اصلی دشمن کو پہچان نہیں سکے، اور حقیقی دشمن کی اب تک نشاندہی نہیں کر سکے کہ ہمارا اصلی دشمن کون ہے. یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، ہمارا مخالف فرقہ ہے، ہماری مخالف زبان، علاقہ، دوسرا صوبہ، کون ہے؟ اپنے دشمن کو بھی آج تک نہ پہچانا نہ جانا. پچھلے درس میں میں نے جنات کا جو تعلق آپ سے عرض کیا تھا، وہ عرض کیا تھا کہ جو دوست جنات اور جس وجہ سے یہ وہ دوست بنتے ہیں ان کو غذائیں دینے سے. اور میں نے عرض کیا تھا احادیث میں ہڈیوں کے بارے میں آیا ہے کہ ہڈیوں سے, گوبر سے اور کوئلے سے استنجا نہ کرنا. اللہ اس پہ جنات کی غذا لگاتے ہیں, کیسے لگاتے ہیں, کس طرح لگاتے ہیں, وہ میرے اللہ کے علم میں ہے. میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے یہ درخواست کی تھی, یہ سارا موضوع کچھ عرض کیا تھا. آج کچھ شریر لوگوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو شریر ہیں اور ہمارا سکھ سکون چھیننا چاہتے ہیں جنات کی شکل میں, وہ کیسے لوگ ہیں. ہمارا چین چھین رہے اور چھیننا چاہتے ہیں. اور اگلی بات, اس سے مشکل ترین بات ہے کہ وہ ہمیں اللہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کر رہے اور کرنا چاہتے ہیں. فرمایا ایک پورا شیطان یعنی جن ہے جو وضو پہ مسلط ہے تو صحیح وضو نہیں کرنے دے گا. ایک پورا جن ہے جو اس بات پہ مسلط ہے کہ وہ دعا نہیں مانگنے دے گا اور دل میں خیال لائے گا جلدی کر جلدی کر جلدی کر نکل یہاں سے, اسے مسلط ہے. اور ایک پورا جن شیطان اس بات پہ میسر ہے مسلط ہے کہ اگر تیرا کوئی مخلص دوست ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں ڈالے, وسوسے ڈالے, شک ڈالے. ماں باپ سے مخلص کوئی نہیں ہو سکتا, مرشد سے مخلص کوئی نہیں ہو سکتا, بس اس کا کام صرف یہی ہے. اس کا کام صرف یہی ہے, اس کی ڈیوٹی صرف یہی ہے. ہم بہت کمزور ہیں, اگر فرشتوں کی حفاظت اللہ پاک جل شانہ ہمارے ساتھ نہ لگائیں. یہ شیاطین جنات, جن کہیں شیطان کہیں ایک ہی چیز ہے, یہ شیاطین جنات پتہ نہیں ہمارے ساتھ کریں کیا. اس لیے جگہ جگہ پہ ہمیں اعوذ باللہ کی چھتری دی ہے, اعوذ باللہ کی ڈھال دی ہے, اعوذ باللہ کا حصار, دیوار اور قلعہ دیا ہے. اعوذ باللہ, مولا بس تیری پناہ میں آ سکتا ہوں تو آ جاؤں گا, مولا تیری حفاظت ہے تو ہو جائے گی, آقا تو چاہے گا تو ہوگا, مولا تو کریم ہے تو کر دے گا تو ہوگا. ورنہ اللہ میں جتنی دیواریں بنا لوں, جتنی قلعے بنا لوں, جتنا حفاظت کا نظام بنا لوں, جتنی بجلی کی تاریں بچھا دوں اپنی دیواروں کے ارد گرد, میں کچھ نہیں کر سکتا, بے بس ہوں. ایسا چور, ایسا ڈاکو اور ایسا لٹیرا جو مجھے نظر ہی نہیں آتا, اس سے کیسے بچ سکتا ہوں, اس سے میں کیسے بچ سکتا ہوں. اس لیے اللہ پاک جل شانہ کی رحمت اور کریمی دیکھیں اور اس کے حبیب کا فیض اور فضل دیکھیں کہ ہمیں قدم قدم پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ کی چھتری دی ہے, اعوذ باللہ کی حفاظت دی ہے, اعوذ باللہ کا نظام دیا ہے, کہ اس کے ساتھ ہی ہم اگر بچے تو بچ سکیں گے, ورنہ اپنی تدبیریں ساری کچھ نہیں ہو سکتے. شیاطین مسلط ہیں ہمارے ارد گرد, ہمارے کھانے میں, ہمارے پینے میں, ہمارے منہ کھول کے جمائی لینے میں. حدیث میں آتا ہے کہ منہ میں آگے ہاتھ دو ورنہ یہ شیطان جن تمہارے پیٹ میں چلا جائے گا. واقعات ہیں, کئی کئی واقعات ہیں, یہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر کیا نقصان دیتے ہیں. ایک آرمی کا بہت بڑا افسر مجھ سے کہنے لگا, بیوی میری پڑھتی پڑھاتی رہتی ہے تسبیحاں وغیرہ اور کبھی یہ کہتی ہے کہ جن جنات, اور میں نے ہمیشہ بیوی کا مذاق اڑایا یا خاموش ہو جاتا تھا کہ بےچارے چلو ٹھیک ہے نیکی پہ لگی ہوئی ہے تسبیحاں پڑھتی ہے. اور یہ وہ چیز جب میرے اوپر بیتی پتہ چلا کہ نہ وہ سچی تھی, میں نے کوئی زندگی میں وہ راہیں دیکھی نہیں تھی جن راہوں کو اس نے دیکھ لیا تھا اور محسوس کر لیا تھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے ہمیشہ جنات کا مذاق اڑایا, پھر گھر سے پیسے چوری ہونا شروع ہو گئے, پھر چوری ہو کے ملتے کہاں سے تھے, चिप्स के पैकेट्स, और वो चिप का पैकेट दिखाता, चिप्स के पैकेट्स। अरे मैं दीवानी बातें कर रहा हूं। अच्छा चलो ठीक है, आपको मैं कोई किस्से सुना रहा हूं, किस्से सुनाने का अंजाम मैं अपनी दवाई बेचूंगा या मदीने वाले का फरमान दूंगा। सोचो ठंडे दिल से, इधर की कहानी सुनाऊं, उधर के किस्से सुनाऊं, इधर की उधर की, करते करते एक साहब को मैंने देखा कि वो ऐसे हाथ करते थे, ऐसे हाथ करते थे, ऐसे हाथ उठाते जाते थे, उठाते जाते थे, उठाते जाते थे, ऐसे ऊपर। वो बेच रहे थे, एक मशीन थी जिसमें आलू, आलू के चिप्स काटने की मशीन थी। वो एक था ऐसा मुठ बनी हुई थी, उसके आगे एक ऐसे सुआ सा था, आलू उसके अंदर चुभो लो, ऊपर एक कटर कटर था, वो ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, समझ आई मेरी बात? ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और वो फिर आलू कट जाते थे। उस मशीन के बेचने के लिए, मैं छोटा सा था ये मैंने देखी ये कहानी, ऐसे हाथ करता था और कहता था, घर की खवातीन मसरूफ होती हैं, आप परेशान होते हैं, फिर लड़ाई हो जाती, फिर लड़ाई को बयान करता था, मसरूफियत की वजह से माई का जहन कितना मसरूफ, फिर लड़ाई का बयान करता था, फिर बच्चों की मार कुटाई भी हो जाती थी, पर बच्चे रोते कैसे हैं उसको बयान करता था, फिर दो चार सात गालियां भी बरकत के लिए दे देता था। ये सिर्फ एक चीज बेच रहा है, उसका सौनवी अंदाज ऐसा था कि दो चार जेब कुतरे भी वहां मौजूद होते हैं एहतियातन एहतियातन पहले से। ये बंदा इतना महव होता है, टुक टुक दीदम दम न कशीदम, ऐसे देखता है देखता देखता सोता नहीं है, देखते देखता कॉन्शियस रहता है, हाँ सोता नहीं है, वहां नहीं सोता, गपशप हो वहां नहीं नींद आएगी, ऐसे जाता है ऊपर ऐसे जाता है। उसके बाद कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख सुकून हो और चुटकियों में काम हो जाए, और देखो फिर एक मशीन है, इसकी कीमत उस वक्त पता नहीं 30 रुपए थी, कितनी थी, 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए कंपनी की मशहूरी के लिए। हाँ याद है तुम्हें, याद हो क्या ना याद हो, फसाना है गम मुझे याद है, कंपनी की मशहूरी के लिए। आओ भाई बताओ भाई, अब कौन लेगा ये आलू बेचने, आलू काटने वाली मशीन, और मेरे पास कोई जो चीज है वो सौदा सच्चा है, मैं सच्चा हूं इसका दावा नहीं, सौदा सच्चा बेच रहा हूं, खरा सौदा, सच्चा सौदा। हां तस्बीखाना दुकान खड़ी है, तस्बीखाने के ऊपर बैठने वाला बंदा जो दुकानदार है, वो दुकानदार है या ईमानदार है ये दावा नहीं, वो दुकानदार है या ईमानदार है यह दावा नहीं है, सौदा सच्चा है। अब मैं कि आपको दुनिया सारी कहानियां सुनाऊं, सारे वाकयात सुनाऊं, सारे मुशाहदात बताऊं, सब कुछ बताऊं, अंजाम यही है कि मैंने आपको मसनून आमाल देने हैं, तस्बीहात देनी है, जिक्र देना है, कमली वाले का फरमान सुनाना है, आका की हदीस सुनानी है, और कुरान और आमाल और सजदों और तस्बीह की तरफ मुतवज्जे करके मैंने अपना सौदा बेच के एक तरफ हो जाना। दो ढाई घंटे की जो खेड़ है वो यही है, सॉरी खेड़ यही है, हर जुमेरात यही खेड़ है, यही सिलसिला है, सब कुछ यही है। हमारे यहां एक साहब होते थे तो लोगों को कायल करने में बड़े माहिर थे, तो उनका एक लफ्ज था, खेड़ कुराड़ी है ते पकड़ बड़ी कुराड़ी है, बंदा बड़ा कुराड़ा है, औखा है ते अथरा है, कोई गल नहीं, शैतान के साथ खेड़ बड़ी कुराड़ी है, सख्त है। हदीस में यहां तक आता है कि जो शख्स शैतान को गालियां देता है जो खुश होता है, फूल के कुप्पा हो जाता है, अल्फाज है मेरे आका के, फरमान का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, मैं इसको गालियां ना दो, वो अर्शी बोल बोलो, वो अर्शी तदबीरें, वो हिफाजत का निजाम, वो किफायत का निजाम, वो किफालत का निजाम, वो जो अर्श मिला है, गालियां देने से कुछ नहीं होता, हमारे तो खाने पे शयातीन मुसल्लत हैं, जिन्नात मुसल्लत हैं, हमारे पीने पे जिन्नात मुसल्लत हैं, हमारी जिंदगी की बीमारियों और तकलीफों में जिन्नात का अमल दखल है, हत्ता के हमें जिन्नात की नजरें बद लगती है, जिन्नात की नजरें बद लगती है। साहिब साहब आप तो नहीं सोते थे, आप तो मशहूर थे ना सोने वाले, दाएं बाएं वाले पड़ोसी सोते थे, आप तो नहीं। जिन्नात की नजरें बद लगती है। ये मेरे सामने सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक है, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे आका की सबसे बातदबीर बीवी, बहुत बातदबीर, अकलमंद, समझदार, बासलीका, सारी बेगमात बाकमाल और अर्श से निकाह वाली थी। अल्लाह ने हर फूल की अपनी खुशबू होती। रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची को देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची को देखा, फरमाया इसे फलां झाड़ फूंक, फलां से दम कराओ, फलां से अमल कराओ, क्योंकि इसे जिन्नात की नजरें बद लगी है, जिन्नात की नजरें बद लगी है। अब एक खत सुनाता हूं आपको, इसी जिमन में एक खत है। आपने इज्तमा में 11 रोजे रखने का कहा था, मैंने वो 11 रोजे रखे, आज मेरा 9वां रोजा है, सुबह शाम 7 तस्बीहात या मुसब्बिब अल असबाब सब्बिब लि अल खैर पढ़ी, इज्तमा की तस्बीहात और उसके अलावा बताई हुई बैत की तस्बीहात की भी बहुत पाबंदी है, हर वक्त बावजू रहूं, दुरूद इब्राहिमी का कसरत से विर्द करूं, सभी सारी चीजें मौजूद हैं। मैंने वो 12 वो 1000 दफा जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो 12 नफिल पढ़ने हैं उसका एहतमाम शुरू किया। जिस दिन से यह अमल मैंने किया, रात को मैंने अजीब दुनिया देखी, वो मुझे अपने हालात बताते हैं, ख्वाब देखा कि जिन्नात की दुनिया उनकी औरतें मुझे बता रही, बालों को कंघी करके बाल ना फेंका करो, हम लोग औरतों के बालों को खाते हैं, इन पर आशिक हैं और हमारी यह गिज़ा है। और मैंने 7 सूद खोरों वाला अमल भी किया जिससे मेरे चेहरे के दाने ठीक हो गए, 7 सूद खोरों का नाम लिख के वो अपने पास रख लें, बीमारियां खत्म, इंफेक्शन खत्म, क्योंकि वो खुद इतने जहरीले हैं कि दूसरी जहरी पना मांगती है, खुद इतने आला दर्जे के एंटीबायोटिक हैं, एंटीसेप्टिक हैं। औरतों के बाल मेरे पास कई केस ऐसे आए कि सर के बाल जकड़े जा चुके हैं, कोई कंघी ऐसा है कि दुनिया का कोई आखिरी गोंद लगा के ना ऐसे गोले से बन गए हैं और सर सख्त है, कंघी अंदर जा ही नहीं सकती, कई केस आए, आखिर मजबूरन सारे सर के बाल मुड़वा दिए, फिर अगले आए तो फिर अगले ऐसे हो गए, आखिर बाल बढ़ते हैं, अगले आए तो अगले भी ऐसे हो गए। मैंने आपको कितने अरसे से एक बात आपकी दरखास्त आपकी खिदमत में किए जा रहा हूं, कितने अरसे से वो दरखास्त ये कर रहा हूं और बारहा कर रहा हूं कि खवातीन के सर के बालों के ऊपर जिन्नात और शयातीन कितने फरेख्ता आशिक और दीवाने हैं, और उसकी वजह से सिर्फ सर के बाल नहीं जकड़े जाते, न मालूम कितनी बीमारियां, कितनी तकलीफें, कितने रोग, कितने मसाइल, टेंशन की शक्ल में, एंग्जाइटी की शक्ल में, स्ट्रेस की शक्ल में, जहनी आसाबी खिंचाव तनाव, खुदकुशियों का ख्याल, या पता नहीं कहां कहां कैसे और क्या बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, आम अकले इंसान ही इसको समझ नहीं पाते, आम शऊर एहसास इसका इदराक कर ही नहीं सकते। बाहर ना फेंका करो, पुराने जमाने की खवातीन कभी बाल नहीं फेंकती थी, और आप कभी बहाया ना करें बालों को, क्योंकि ये पानी में तैरते हैं और जगह जगह गंदगी में अटक जाते हैं, हमेशा खवातीन के बाल मिट्टी में दबाते हैं। जिन्नात की पसंदीदा चीज क्या है, गिजा क्या है? कब्र में सबसे आखिर में जो चीजें गलती हैं और खस्ता होती हैं, उसमें रान की हड्डी, खोपड़ी और बाल और नाखून। खोपड़ी, रान की हड्डी जिस्म की सबसे सख्त हड्डी है, और जिस्म की सबसे नरम हड्डी हंसली की हड्डी है, क्लेविकल बोन, सबसे नरम हड्डी है ये जो क्लेविकल बोन है, नरम हड्डी, ये सबसे नरम है, और सबसे सख्त रान की हड्डी और खोपड़ी की हड्डी। बाजोकात इंसान को कितनी चोटें लगती हैं, हड्डी नहीं टूटती। ये चिता में राख के साथ 10 फूल भी चुनते हैं। चिता में हिंदू जब जलाते हैं उसकी राख के साथ 10 फूल चुनते हैं, वो फूल नाखून होते हैं, उसे कहते हैं 10 फूल चुनना, हाथ के पांव के, ये फूल भी चुनते हैं, उसे राख में से कुरेदते हैं। मुझे बताने लगे कि बाजों का जल जाते हैं और अक्सर नहीं जलते, रह जाते हैं। हमारी जिंदगी में कुछ नादीदा चीजें हैं, नादीदा, जिसे मेरी आपकी दीद नहीं देख सकती, नादीदा, मेरी आपकी दीद नहीं देख सकती। कुछ नादीदा चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में हैं, हम नहीं देख सकते, फिर एक इतबार करना पड़ेगा, फिर किसी भी एतमाद करना पड़ेगा। और एतबार में सबसे बड़ी हस्ती हमारे कमली वाले हैं, उन पे एतबार फिर करना पड़ेगा। मेरे हबीब ने जो बताया सच बताया, जो बताया हक बताया, जो फरमाया सच हक है और हकायक है। आज की साइंस सारी रिसर्च के बाद उन हकायक पे वापस पलट रही, लौट रही, लेकिन मेरे कमली वाले ने जो फरमा दिया, हक फरमाया और सच फरमाया, वो हकीकत ही हकीकत है, वो सच ही सच है, और वो सब कुछ ठीक है। मेरे पास 1984 से लेकर अब तक 30 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, सर के बालों के डसे हुए बेशुमार केस आए, और खासतौर पे खवातीन, सर के बालों के डसे हुए केस। अच्छा चलो, आपको एक हदीस मुबारक की तरफ मुतवज्जे करता हूं। मेरे हुजूर के ऊपर जो जादू हुआ था, वो भी सर के बाल चुराए गए थे, कंघी के दंदाने, सर के बाल चुराए गए थे, सर के बाल चुराए गए थे। हमारी जिंदगी में बालों के साथ हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा जकड़ी हुई है, बहुत ज्यादा। हजूर की मुतबर्रक चीजों में से, बाबरकत चीजों में से, आपके बाल मुबारक हैं जो कायनात में मुख्तलिफ जगहों पे बिखरे हुए हैं, सादत मंदी के लिए, बरकत के लिए, हजूर के बाल मुबारक हैं। यही हजरत उम्मे सलमा, जिनसे मैं रिवायत अर्ज कर रहा हूं, इनके पास हजूर के बाल मुबारक थे। वो एक चांदी की नली में थे। मदीना में जिस शख्स को बुखार बीमार होता था, वो उसमें से पानी गुजार के दे देती थी, वो ठीक हो जाता, उसमें से गुजार के देते थे, वो ठीक हो जाते। अपनी जिंदगी में हम ये देखें कि हम कहां नुकसान उठा रहे हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सरबस्ता हैं, राज हैं। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि वो सरबस्ता राज आपकी खिदमत में पेश करूं, कोशिश कर रहा हूं, वो सरबस्ता राज आपकी खिदमत में पेश करूं, और ऐसे सरबस्ता राज जो हमारी जिंदगी में आज तक मुइम्मत है, सुना था, लेकिन उनके अंदर के वो राज, वो हकायक, जैसे मैंने पिछले दफा आपसे हड्डियों के बारे में अर्ज किया कि जो हम हड्डियां खाते हैं जायना किया करें, उसको साफ जगह पे रखा करें, और उसका जो राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की वो एक सच्ची हकीकतें थी जो दिल को जाके छूती हैं, जो तबीयत को जाके माइल करती हैं और हमारे मिजाज को मुतवज्जा करती हैं कि वो वाकई सच्ची हकीकतें थी। कई वाकयात हैं, गोश्त लेके आ रहा था, कच्चा गोश्त था, सिरी पाए थे, देहात में उसके साथ वाकयात होना शुरू हो गए, आपने शायद सुना होगा कि साइकिल पे पीछे गोश्त बंधा हुआ था, देखा तो एक माई साइकिल पीछे बैठी हुई है, माई साइकिल वजनी हो गया और थोड़ी देर हुई कि माई के पांव ऐसे बढ़ते गए बड़े लंबे होते गए और आज घसीटना शुरू हो गए और साइकिल इतना वजनी हो गया वो चला ना सका। आखिर तय इस बात पे हुआ कि ये गोश्त मुझे दे जा, फिर तुझे छोड़ूंगी। उसने गोश्त दी, जान छुड़ाई, हर गया, बुखार हो गया, तकलीफ होगी, फिर दम कराया। ये वाकयात उमूमी हैं, आप में से हर तीसरे चौथे दसवें बंदे को कोई ना कोई वाकया सुनने को मिला होगा। जिन्नात की नजरेबाद मेरे आका ने फरमा दिया, और कितने हम दीवाने हैं कि अपने सब्जियां, अपने फल, अपने गोश्त, शापर में दूध, शापर में हर चीज, और कितनी नजरें खाती 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 उसको फिर हम खा जाते हैं। हम कैसे दीवाने हैं, फिर लाइलाज बीमारियां, फिर लाइलाज रोग, फिर लाइलाज मसाइल, फिर बढ़ती हुई अस्पतालें, ऐसी अनोखी बीमारियां, ऐसी। मेरे उस दिन एक सर्जन मेरे पास आया बैठा था, लाहौर के एक बड़ी अस्पताल में बड़ा सर्जन है। मैंने कहा आपको समझ आ जाती है जितना आप कहते हैं हम सर्जरी करते हैं? उन्होंने कहा जी इतनी जिंदगी आई है, बस हम दोनों टाटकों पे चल रहे हैं, कुदरत का निजाम है, ना जिस्म समझ आता है, ना रब की सनाई, ना रब की कीमियागरी समझ आती है, और इतनी फिर अगली अनोखी बीमारियां हैं जो हमने कभी पढ़ी सुनी नहीं, बस कर देते हैं, हो गया ना हो गया, हम क्या कर सकते, नजर खा जाती है। फिर एक नजर खाती है, दूसरा जिन चीजों से नजर ने बचाना था उनसे हम बच गए, हमने उसको छोड़ दिया। वो मसनून दुआएं थी, वो कुरानी दुआएं थी, वो हदीस के अमाल थे, जिन चीजों से हमने बचना था हमने छोड़ दी। ये दुआएं हैं बेशुमार, दो तीन मैं अर्ज कर रहा हूं, बेबहा कुरान की दुआएं हैं, हदीस की दुआएं हैं, कुरान की आयात है, वो भी हमने छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी। फिर जिन चीजों की वजह से घर में शयातीन का दाखला होता है, जिन चीजों की वजह से, वो चीजें हमारे घर में ज्यादा आ गए। एक साहब मेरे पास आए कि उन्होंने मोबाइल को पुर्जे करके रखा हुआ था, फूला हुआ था मोबाइल सारा, यानी उसका ढकना इलादा, उसकी बैटरी इलादा, सब कुछ इलादा। उन्होंने कहा जिस वक्त मैं बैटरी अंदर देता हूं और मोबाइल मेरा ऑन होता है, मेरे जिस्म में आग लग जाती है और कट पड़ना शुरू हो जाते हैं। आप यकीन जानिए मैंने खुद देखा, मर्द था, मैंने उसकी कमर से कपड़ा उठवाया, ऐसे काटा हुआ था जैसे ना एक है ना सिर्फ ऐसे काटते हैं, एक है इधर काटे दरमियान वाला गोश्त निकाल लें, ठीक है, तो थे वो ऐसा बेचारा, अरे बस जूं फिट करता हूं बैटरी, हम उससे अनोखी बातें सुनेंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं, शादी को 16-17 साल हो गए हैं, मियां बीवी आपस में करीब जा ही नहीं सके, कुछ ताकत है वो नहीं जाने देती, घर वाले औलाद को तरसते हैं, वो आपस में मिलने को तरसते हैं, और जिंदगी बिचारी ऐसी वीरानी में गुजर रही, दुनिया का हर डॉक्टर, हर हकीम, हर कुछ छोड़ा ही नहीं, نظر کھا جاتی ہے جنات کی شیاطین. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں صرف کرسی بیٹھتا ہوں سوتا ہوں, اگر میں سو جاؤں تو میرے اندر سے پیچھے سے ایسی چیز داخل ہوتی ہے, میرے دماغ پہ پہنچ جاتی ہے, پخانے والی جگہ سے ایسی چیز داخل ہوتی ہے اور میرے پورے جسم میں, اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز مجھ سے بدفیری کر رہی ہے. ان کی عمر ہوگی کوئی 45-50 سال. تو آپ کو ایسی باتیں بتاؤں آپ پریشان ہو جائیں گے, لیکن جنہوں نے میری باتیں سنی ہوں گی یا آزمائی ہوں گی یا ان کے سامنے خود نہیں آزمائی, کوئی واقعات کیس ان کے گھر پڑوسی وغیرہ میں ایسے آئے ہوں گے, وہ کہیں گے یہ سندہ سچ کہتا ہے ایسا ہوتا ہے, یہ بندہ سچ کہتا ہے ایسا ہوتا ہے. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ جس گھر میں, لیاقت پور کے ساتھ ہے الہ آباد, تو وہاں کے اہل حدیث سارے حضرت کے مرید تھے. حضرت جس گھر میں جاتے تھے تو حضرت پریشان ہوتے تھے. صاحب کشف درویش تھے, 78-78 میں فوت ہوئے, حضرت کا بھی سال ہوا, میں بھی جنازے میں شامل تھا. حضرت جو ہے وہ واتے اور ایک لفظ کہتے تھے, فقیرو تورے گھر گھر جنات اللہ ہے, گھر گھر جنات کی گزرگاہیں ہیں, تمہارے گھر گھر جنات کی گزرگاہیں ہیں. اور میں حضرت کیوں, پر میں جب سے قرآن چھوڑا ہے, جب سے قرآن چھوڑا ہے گزرگاہیں ہیں. آتا جاتا بندہ, باغ کی دیوار کیوں ہوتی ہے, اس کا دروازہ کیوں ہوتا ہے. ہمارے ایک مستری صاحب ہیں, والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا کام کرتے تھے, میں ان کے ساتھ جا رہا تھا, کہنے لگا کہ اب تو یہ باغ ویران ہو گیا, وارث نہ رہا. اے دیکھیں یہ دیوار ہے اب ٹوٹی ہوئی ہے, ایک دم میں یہاں سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی, اب تو دیوار ساری ختم ہو گئی, اس کی پلاٹنگ ہو گئی. کہنے لگا ایک دفعہ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی, میں اندر آیا تو مالک کھڑا ہوا تھا, اس نے اوے چھوکرا کہاں سے آیا, ادھر آ, یہاں سے ادھر سے واپس چلا جا, یہ تجھے گزرگاہ ہے یہ کوئی, تجھے پتا نہیں دیوار ہے. انہوں نے کہا حضرت دیوار ٹوٹی ہوئی تھی. اچھا, اس نے فوراً اپنے منشی کو بلایا, اس کو ڈانٹا کہ دیوار کیوں ٹوٹی ہوئی تھی. دیواریں تو ہوتی اس لیے ہیں کہ گھروں کے اندر کوئی جان انجان نہ آ جائے, اور جس گھر میں دیواری نہیں ہوتی اس میں جو آ جائے آ جائے, جو آئے جہاں سے گزرے آ جائے آ جائے, جیسے کیا ہر جائے. قرآن ہمارے گھر کے ارد گرد کی دیواریں ہیں. آیت الکرسی, اعمال, تسبیحات, ذکر, مسنون دعائیں ہماری زندگی کے ارد گرد کی دیواریں ہیں, ہمارے جسم کے ارد گرد کی دیواریں ہیں, ہمارے دل کے ارد گرد کی دیواریں ہیں, ہمارے گھروں, ہمارے مکانوں, ہماری دکان, ہمارا بزنس, ان کے ارد گرد کی دیواریں ہیں, ورنہ بزنس برباد ہو جاتے ہیں, دکان ختم ہو جاتی ہے. وہی دکان تھی جس نے ساری کچھ تجھے بنوا کے دیا, وہی دکان ہے جو دو وقت کی روٹی نہیں دیتی. ایک شام مجھ سے لے گئے, مجھے لے گئے, ہم گزر رہے تھے, کہنے یہ دکان ہے دعا کریں بک جائے. اس دور میں 14 لاکھ لگے تھے, بڑی لمبی دکان, مین بازار کی دکان. میں نے کہا انشاءاللہ نہیں بکے گی, اللہ پاک تجھے اسی میں سے دے گا. کہنے لگے جی کہاں روٹی نہیں ملتی, روٹی نہیں ملتی. میں نے کہا پڑھ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. زیر زبر ٹھیک کر لینا, میں بھی کروں گا اپنی زیر زبر ٹھیک. ارے سارا دن اس کو پڑھ پڑھ, اور کہے مولا عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے, تو نے مجھے زوال دے دی ہے, اب اس میں عروج کی راہیں دکھا دے, تو نے مجھے زوال دے دیا, اب اس میں عروج کے راستے دکھا دے. میں نے اس کو بے بہا پڑھ, بے بہا پڑھ پڑھ پڑھ. ابھی یہ کئی سال پہلے کی بات ہے, ابھی چند ماہ پہلے میں گیا, اچانک میں ایسی پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا, میں گیا تو دکان پہ بیٹھ جا کے بیٹھ گیا, تو اچانک دیکھا تو بڑا خوش ہوا. میں अरे मैं आज तुझे एक वाक्य सुनाता हूं। ये वाक्य हजरत अमीर मोमिन उमर रजी अल्लाह तआला के साथ भी हुआ है और इसी से मिलता जुलता वाक्य हजरत अली करम अल्लाह अजल करीम के साथ भी हुआ है। एक माई के बच्चों को देखा रो रही है, उसने हंडिया चढ़ाई हुई है तो पूछा ये क्यों चढ़ाई हुई है? उन्होंने कहा बस ऐसे पानी में हंडिया चढ़ाई हुई है तो कुछ नहीं। बच्चों को कहती हो बेचा अभी चुप करो, देखो पक रही है, पक रही है, चलो रोते रोते सो जाएंगे। बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं होता। कुमैल अली के गुलाम थे रज़ी अल्लाह तआला, मैं उसको समान कंधे पे उठवाया और एक रिवायत में खुद उठाया, उसने कहा कि मुझे उठाने दे। मैं नहीं, क्या क्यामत के दिन तू मेरा बोझ उठाएगा? चर्बी भरी, उसमें चीजें भरी, गए उनको पका के दिया। एक डिलीवरी के केस में भी ऐसा है, यह उमर रज़ी अल्लाह का वाक्य है, अपनी बीवी को साथ ले गए, पका के दिया और पकाने के बाद फिर उनके बच्चे खुश हो गए, खेलने लगे और कुछ देर बैठे थे। गुलाम कहने लगा आकाश चले, कहने लगा ठहर जाओ, मैंने इन्हें रोते देखा था, हंसता हुआ देखो मेरा दिल ठंडा होगा, मैंने इन्हें रोते हुए देखा था, मैं हंसता हुआ देखना चाहता हूं। मैंने कहा मैं तेरी दुकान में से हंसता हुआ देखने आया हूं और अल्लाह के नाम की ताकत देखने आया हूं, अल्लाह के नाम की तासीर देखने आया हूं। मैं एक जगह एक सफर से वापस आ रहा था, मेरे दिल में आया कि एक मेरे दोस्त हैं, एक साहब है, उनके पास जाऊं, क्योंकि मैं पहले गया था छोटी सी दुकान थी, किसी की दुकान है? उन्होंने कहा घर के शोपीस वगैरह, गुलदस्ते गुलदान वगैरह इस चीज की दुकान थी और अपने तमंगरी दी। फिर कहने लगे जी मैंने एक ऐसी दुकान ली है जिसका एक शटर इधर भी है इधर भी है। तो मैं उनकी दुकान पे गया और मैंने कहा गरम गरम जलेबियां ले आ, बेचारा ढूंढता ढूंढता ले आया, थोड़ी सी खाई, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मीठा जो है वो खासतौर पर पेट को नुकसान देता है, पेट बढ़ाता है, चर्बी बढ़ाता है। जो जिसका मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट ही पतला सूखा हो वो जी भर के खाए बेशक, और जिसका खानदानी मिजाज में मोटापा हो या वो एहतियात करे। बाज लोग ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ एक से खाजा साहब थे, एक एक को चीनी बैठे बैठे ऐसे खा जाते थे शुगल होते हुए। चीनी तो एक एक पाव ऐसे बैठे बैठे खा जाते थे। वो इरशाद आरिफ साहब है, सियाफी हैं, नेक आदमी हैं, मेरे पास आए तो उनके साथ एक साहब थे, तो मैंने कहा चीनी किस लिए? उसने कहा मैं तो चाय पीता हूं चीनी के लिए, जितनी डाली जाओ डाले जाओ डाले जाओ, बस हिलाते जाओ मिक्स होती जाए। और मैं डालता गया, मैंने कहा अब चाय बाहर आती है, कह रहे अब मजबूरी है छोड़ दे, अब मजबूरी है छोड़ दे। उनकी दुकान पे गया और जलेबियां एक बहाना थी और मैं थोड़ी देर बैठा, उसको खुश होकर अपने सफर पे आ गए। मैं लाहौर आ रहा था कहीं से, ये चीजें हमारी जिंदगी में जगह जगह हमें डस लेती हैं। जिन्नात से कभी हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे रूहानी तरक्की है या मादी तरक्की है। शयातीन से, नेक जिन्नात की बात नहीं कर रहा, मेरा पिछले दर्श का मौजू नेक जिन्नात थे। ऐसे हमारे इंसानों में नेक भी होते हैं बद भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी का खाया बर्दाश्त नहीं कर सकते, पहना बर्दाश्त नहीं कर सकते, चला बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे कई लोग आते हैं कहते हैं मेरे पास हसद की बीमारी है, और आपके दर्श के बाद एहसास हुआ है कि यह भी कोई रोग होता है, हसद का रोग है मेरे ऊपर और मैं हसद के रोग में बहुत परेशान हूं। कोई ऐसा कोई हो जाए कि मेरा हसद खत्म हो जाए, मुझे कीने का मर्ज है, मुझे बुग्स का मर्ज है, वो ऐसा मेरा हल हो जाए कि मुझसे कीना और बुग्स मेरा खत्म हो जाए, ऐसा कोई मेरा कोई हो जाए। अल्लाह पाक जिसको एहसास दे दे फिर वो खत्म भी हो जाता है, बड़ा करीम है आका, खत्म भी हो जाता है। आप ये देख लें कि उनकी नजर आपको खा जाएगी। अगर चीज नंगी रखी, औरत नंगी हो, बाल नंगे हो, चेहरा नंगा है, चीज नंगी है, खा जाए। एक साल मेरे पास आए, बीवी थी, बच्चे थे, बेटियां थी। अपनी बीवी को कहने लगे तुम बताओ, वो कहने लगे आप बता दें। कहने लगे मैं नहीं बता सकता, तू बता। उन्होंने ये बच्ची बैठी है यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इसके जो रानी है सारी की सारी इनके ऊपर स्कट्स हैं और ऐसे हैं जैसे दांतों से काटने के निशानात हैं। कहने लगे मैं कैसे बयान करूं। और रात को उठ के बैठ जाती है और मैंने कहा इसको मैं खुद दिखाऊंगा इसके इसके साथ है क्या। तो बेचारी यूनिवर्सिटी पढ़ती है, इसको समझ मेरी बातें नहीं आएंगी, खुद देखे। ऐनुल यकीन, ऐनुल यकीन, इसमें खुद दिखाऊंगा, खुद दिखाऊंगा। अब ऐसा करें सारे के सारे जितने बैठे हैं आंखें बंद करके डूब जाएं। पहले मेरी बात सुन लें, पहले सुन लें, मेरी तरफ देखिए, डूब जाएं। और यह तसव्वुर करें कि अल्लाह का अर्श है, अल्लाह की बस रहमत है और आपने एक लफ्ज पढ़ना है या लतीफ हो, क्या या लतीफ, एक लफ्ज पढ़ना है और डूब जाएं और आंखें बंद रखें और या लतीफ को पढ़ना है सिर्फ, आपको क्या महसूस होगा फिर आप खुद महसूस करेंगे। जिसका दिल का बर्तन ऐसी रौनक वाला है तो एक मिनट में महसूस होगा कि अल्लाह का नाम लतीफ है और या लतीफ अपना रंग दिखाता है। या लतीफ अल्लाह का नाम है और अल्लाह पाक ऐसी ऐसी लताफतें, ऐसी ऐसी बारीकियां बंदे को दिखा देता है जिससे चाहे पर्दे हटा दे, जिसके लिए चाहे पर्दे लटका दे, बंद कर दे। आप ये डूब कर करें, करेंगे डूब जाए, इधर उधर मत देखो। एक कुदरती एक अल्लाह की तरफ से हो गया। मुझे नए वजू की जरूरत थी, कुदरती मुराकबा हो गया। अपने उस अजली दुश्मन को पहचाने जो आपकी जिंदगी में मुसलसल आपको नुकसान दे रहा। हमने दुश्मन और बना लिए, जो दुश्मन थे नहीं हमने उन्हें दुश्मन बना लिया। जो दुश्मन थे नहीं हमने उन्हें दुश्मन बना लिया और जो दुश्मन था उस दुश्मन को हमने कभी ना जांचा, ना परखा, ना समझा, ना समझने की कोशिश की। हजरत अली बिन हुसैन, जिनको अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले इस तरह खबर हुई, जब आप मदीना तशरीफ लाए और आपकी तशरीफ आवरी से पहले बल्कि नबूवत जब हुई, जब आप नबूवत का ऐलान फरमाया, वहां एक खातून के पास जिन आता था और वो जिन आया तो दीवार पर खड़ा हो गया। एक रिवायत में है कि एक परिंदे की शक्ल में आके दीवार पर बैठ गया। उस औरत ने कहा कि तुम नीचे क्यों नहीं आते। उसने कहा नहीं, अब अल्लाह के रसूल मबऊस हो गए हैं, अब एक नबी हैं जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है, आखिरी नबी हैं, अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता, तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। میں واقعہ بیان کر رہا تھا اس خاتون کا جس کا جسم جگہ جگہ سے کٹا ہوا نہیں تھا. میں نے کہا تھا نا کہ جیسے ادھر سے کاٹیں ادھر سے کاٹیں اور درمیان میں سے گوشت نکال لیں, وہ جسم تھا. میں نے ان سے عرض کیا کہ میں خود اس کو دکھاؤں گا, اور میں نے اس کو کہا کہ روزانہ یا لطیف پڑھ. ایک میں نے آپ کو استخارہ بھی بتایا تھا, یا علی معلمنی یا خبیر و اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. ایک یہ بھی ہے صرف یا لطیف, اور تصور یہی ہو کہ اے اللہ تیرے پاس لطف و کرم کے خزانے ہیں اور کائنات کی باریکیاں تو جانے, تیرا علم جانے, کائنات کہاں کہاں کے رازوں سے مل کر بنی ہوئی ہے. مولا مجھے کوئی کائنات کے راز دکھا دے. اس نے خود دیکھا, اور آج نے آ کے مجھے اپنا خط پکڑایا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہر بال بال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ایسے بندے ہیں جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بونے ہوں, انچ انچ کے, پونا انچ کے, اتنے ہاتھ کے چھوٹے, ایک پورے سے کم, وہ میرے ہر بال کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں, مچل رہے ہیں, اور تھوڑی تھوڑی کے بعد وہی ہوتے ہیں اور آ کے میری اس جسم کے حصے پہ مجھے کاٹتے ہیں اور گوشت میرا نوچ کے چلے جاتے ہیں, پھر بالوں سے لٹکے رہتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا یہ کیا جواب دیتے ہیں, آپ نے ان سے سوال کیا, انہوں نے خود آپ کو جواب دیا. وہ کہتے ہیں جی میرے مطابق یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطانی چیزیں انسان کے, عورتوں کے بالوں کو زیادہ پسند کرتے. جیسے میں نے ابھی آپ کو روایات پڑھ کے سنائی ہیں, تو میں نے ان سے عرض کیا پھر اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, چلنے کے بالوں کو چھپانا. آپ نے کوئی محسوس نہیں کیا عورت کے بال اگر نماز میں باہر نکلے ہوئے کپڑے سے, سر کے بال, پھر کیا ہوتا ہے, نماز ٹوٹ جائے گی. وہ کہتا ہے کیوں, مرد سر کو ڈھانپ لے پگڑی سے ٹوپی سے ٹھیک ہے, عورت کے بال اگر نماز کی حالت میں نماز سے کپڑے سے باہر نکلے ہوئے ہیں, میرا اللہ اس حاضری کو قبول نہیں کرتا. دوسرے لفظوں میں نماز ٹوٹ جائے گی, نماز نہیں ہوگی, اصل دوسرے لفظوں میں میرا رب اس حاضری کو قبول ہی نہیں کرتا. میرا اللہ کہتا ہے یہ حاضری میری حاضری نہیں ہے, کیوں, میں نے تمہیں اس بالوں کے چھپانے کا حکم دیا تھا, تو نے یہ بال نہیں چھپائے, حتیٰ کہ تیرے چار بال, دو بال, ایک بال باہر نکلا ہوا ہے. میرے اللہ کہتا ہے کہ میں 100% لیتا ہوں, ادھور ادھوری میرے پاس کہانی نہیں ہے, یا 100% میرا ہو جا یا 100% ابو جہل کا ہو جا, یا 100% میرا ہو جا یا 100% شیطان کا ہو جا, یا 100% میرا ہو جا یا 100% ابلیس کا ہو جا اور اپنے نفس لعین کا ہو جا, میں 100% کی کہانی میرے پاس ہے. آپ محسوس کریں کہ وہ چیز جو ہے نماز, میرا اللہ کہتا میں قبول ہی نہیں کرتا, خود میرا رب قبول نہیں کرتا, جس کو ہماری مسائل کی دنیا میں کہتے ہیں کہ وہ نماز ہوتی ہی نہیں. نماز ہوتی ہی نہیں ہے, نظر کھاتی ہے. یاد رکھیں گے پہلے دور میں وہ ہماری والدہ رحمت اللہ علیہ کی جو ہے وہ خالہ کی بیٹی ہے, بڑھی ہے بیچاری بہت زیادہ, ہم ان کو ماسی کہتے ہیں. اب تو اللہ معاف کرے لفظ ماسی کو ایسا ہم نے بہت نیچے درجے میں لے گئے, جو کام کرنے والی ہیں ان کو ماسی کہنا شروع کر دی. وہ کہتی ہے کہ پہلے دور میں بچے کا پخانہ بھی چھپاتے تھے کہ کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ اتنا صحت مند پخانہ ہے. نظر نظر کا فرق ہوتا ہے. چلو ساری چیزوں سے نظر کا فرق رہا, مجھے آپ یہ بتائیں جناتی شیطانی چیزیں, جناتی چیزوں کی نظر سے آپ کیسے بچ سکیں گے؟ بچیں گے تو اس سے جس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے
हमें फरिश्तों की मदद लेनी होगी।
फरिश्तों की मदद के बगैर हम बच नहीं सकते, और फरिश्तों की मदद लेने के लिए अल्लाह की मदद लेनी होगी। फरिश्ते अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, और उनकी ड्यूटियां मेरा रब लगाता है, अल्लाह की मदद लेनी होगी। और अगर अल्लाह की मदद लेंगे तो बात बनेगी, और ये अल्लाह की मदद, सारा कुरान अल्लाह की मदद है, सारी दुआएं अल्लाह की मदद है, सारी मेरे आका के मसनून आमाल अस्माए हुस्ना, ये सारी अल्लाह की मदद, ये सजदे, ये सदका, ये तस्बीहात, ये जिक्र, ये अस्कार, ये सब मेरे रब की मदद है, ये उसका मदद का हिस्सा है, ये सब मदद है। मदद के बगैर कुछ हो नहीं सकता। अल्लाह वालों के यहां जिन्नात होते हैं, और कहते हैं कि हजरत मियां साहब फरमाते हैं जिन्नात हजरत खलीफा साहब के पास, खलीफा गुलाम मोहम्मद साहब दीनपुर शरीफ वालों रहमतुल्लाह अलैह की बात अर्ज कर रहा हूं, होते थे। एक रात हजरत बिस्तर पर मौजूद नहीं थे, जब देखा तो मस्जिद में जिन्नात को हल्का जिक्र करा रहे हैं। एक दफा खलीफा साहब बीमार हो गए, जिन्नात आपकी इयादत के लिए हाजिर हुए, आकर चार पाई हिलाते थे। हजरत ने उनसे फरमाया, क्यों तंग करते हो, मेरा हाथ लग गया ना अस्तंजा वाल काबल वन करे सो, अगर मेरा हाथ लगा तो फिर अस्तंजा काबल जाके करोगे, क्यों मुझे तंग करते चार पाई मेरी हिलाते हो। अकीदत से उनके यहां अकीदत होगी, कोई हजरत को चूम रहा होगा, कोई ये कर रहा होगा, खुदा का खौफ करो मरीज है, मेरा हाथ लग गया ना तो अस्तंजा काबल वन करे सो, हटो दूर हट के बैठो। हजरत की जौजा मोहतरमा जब हयात थी तो घर से जिन्नात वगैरह का सामान, जिन्नात जरूरत का सामान उठाकर ले गए। जब वापस रखने आए तो अम्मा जान ने फरमाया, क्यों परेशान करते हो, जवाब दिया हमारी शादी थी इसलिए आपका सामान ले गए थे, आप वापस रखने आए। मैं अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ देखता था जिन्नात के अनोखे वाकयात हुए, अनोखे वाकयात हुए, हमारे तस्बीह खाने में वाकयात ही वाकयात भरे हुए हैं, भरे हुए हैं, ऐसे अनोखे वाकयात जो आम अकल इंसानी के समझ में ना आए। अगर ज्यादा बयान किया जाए तो जिस बेचारे का बर्तन छोटा है वो कहेंगे शायद दुकानदारी है, बर्तन छोटे होते हैं। जिन्नात हमारी जिंदगी में हैं और उनका दखल है, और वो जिंदगी में ऐसे हैं कि हमारे गुमान और ख्याल से बालातर हैं, हमारे गुमान और ख्याल से बालातर। आप कभी ना सोचिएगा कि आप तन्हा हैं, आप कभी ना सोचिएगा आपको कोई देख नहीं रहा, आप कभी ना सोचिएगा खाना खाते हुए आप अकेले हैं, और कभी ख्याल ना कीजिएगा हर तरफ से तन्हाई है, आप हैं और आपकी महरम है, और आप अपनी जिंदगी की कोई जरूरत पूरी कर रहे, कभी ना सोचिएगा वहां भी जिन्नात मौजूद हैं और वो उसमें शामिल होते हैं, और सारी जिंदगी के लिए औलाद में रोग होते हैं मुख्तलिफ, बीमारियां होती हैं मुख्तलिफ, आदात होती हैं मुख्तलिफ, कैफियात होती हैं मुख्तलिफ, आप गुमान नहीं कर सकते। उस वक्त भी किसी हस्ती को अल्लाह को याद करना, आउज़ बिल्लाह पनाह लेना, अपने आप को हिफाजत में लेना लाजिम है, बहुत लाजिम है, वरना सारी जिंदगी के रोग हैं, सारी जिंदगी की मुश्किलात हैं, और सारी जिंदगी के मसाइल हैं, और सारी जिंदगी का भुगतना है, औलाद और नस्लों की आदाद अतवार तबीयत और उनका दिन उनकी रातें अपनी, और फिर क्या कुछ होगा, सिर्फ उस लम्हे की गफलत। हालांकि वो हलाल है, लेकिन हलाल से पहले भी तेरे दुश्मन तो मौजूद हैं। उस लम्हे की गफलत में भी हमें मेरे रब ने तन्हा नहीं छोड़ा, और मेरा अल्लाह कहता है ठहर जा, तेरी जिंदगी में सुख सुकून, तुझे तेरे अंदर मैंने ये कैफियत रख दी है, ये गलबा रख दिया है तेरे अंदर, मियां बीवी में ये कैफियत रख दी है, लेकिन इसके लिए भी पहले जरा मुझे याद कर ले, मेरी पनाह में आ जा, मेरी छतरी में आ जा, मेरी हिफाजत में आ जा, जरा ठहर जा, मेरी पनाह मेरी छतरी और मेरी हिफाजत में आएगा तो फिर इंशाल्लाह तेरे मसाइल हल मेरी मुश्किलें दूर और तेरी परेशानियां दूर होंगे। मेरी हिफाजत में आ जा मेरी पनाह में आ जा। तुम बड़े कमजोर हैं बहुत कमजोर है। मेरे पास एक केस आया खातून के बाल रस्से बने हुए थे। आपने बाल देखा ना कि बाल दरबारों पे या कुछ बंदे ऐसे फिर रहे होते हैं जिनके बाल ऐसे रस्से लिट्टे बनी होती हैं रस्से बने होते हैं वो तो खैर उन्होंने खुद बनाए होते हैं मस्त होते हैं लेकिन वो बिल्कुल रस्से बने हुए थे और ऐसे गुंदे हुए थे कि कोई चीज उसे खोल नहीं सकती थी। वो कहते थे हमने हर हल कर दिया। उसने कहा जी फला शैंपू किसी ने कहा फला दवाई किसने कहा फला चीज सब इस्तेमाल करके देख लिया कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने उनसे अर्ज किया मैंने कहा ये रस्से ऐसे नहीं खुलेंगे ये कलाम इलाही से ही खुलेंगे कलाम इलाही से खुलेंगे। फिर मैंने उनसे अर्ज किया कि आप ऐसा करें इसको खोलने के लिए ना आप आखिरी छह सूरतें पढ़ें। ये जो आखिरी छह सूरतें हैं ना बड़ी ताकत है आपको याद है मैं बताता रहता हूं कि अपनी नमाज में आखिरी छह सूरतें पढ़ें अपनी नमाज में आखिरी छह सूरतों का एहतमाम करें चाहे पहली रकत में छह सूरतें पढ़ें या दूसरी रकत में या पहली रकत में तीन पहली रकत में और तीन दूसरी रकत में ये पढ़ें। उनसे अर्ज किया छह सूरतों का एहतमाम नमाज में करें और यही छह सूरतें पढ़ते पढ़ते एक एक बाल खोलें। तीन हफ्ते कोई साढ़े तीन हफ्ते लग गए वो कहते हैं पढ़ते हैं नहीं खुलते मैं खुलेंगे और इसी से खुलेंगे इंशाल्लाह और इसी कलाम इलाही से खुलेंगे। उसकी तासीर है हमारी वो जुबान नहीं है जो सहाबा अहले बैत औलिया सालहीन एक ही वक्त में पुकारते थे और अल्लाह की मदद उसी वक्त आ जाती थी। हमारी वो जुबान नहीं है हमारा वो जुबान वो ले जा वो तासीर नहीं है लेकिन कलाम इलाही वही है। पढ़ते पढ़ते आखिरकार बाल खुलना शुरू हो गए और खुल गए और पूरे बाल हत्ता के कंघी में से बाल निकल आते थे कंघी में से निकल आए। पहले तो कंघी फेर रही गुमान से बाल अतर है सारे बाल जिसमें ऐसे बिल्कुल ऐसे गुच्छे बने हुए और गुच्छे बने के बाद सख्त किस्म के ऐसे हैं जैसे कोई मैं क्या कहूं गाजरें कहूं गोंगलू कहूं मूलियां कहूं शकरकंदी कहूं ऐसी तरह चकड़ा हुआ सर है सारा। एक एक बाल खुलना शुरू हो गया इन छह सूरतों की वजह से। आपको याद है मैंने अर्ज किया था छह सूरतें लाइलाज बीमारियों से हिफाजत का निजाम है और छह सूरतें हमारी जिंदगी में बरकतें और ऐसी बीमारियां जिनका ताल्लुक इंसान सोच नहीं सकता कि बस वो कहता है कि दुनिया में इसका इलाज नहीं है। नमाज में छह सूरतों का एहतमाम नमाज में अलम नशरा और अलम तरा कैफा का एहतमाम। एक बाबा जी आए हजरत बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह के हजरत मेरे दुश्मन बहुत हैं पर मैं पहली रकात में अलम नशरा पढ़ दूसरी में अलम तरा कैफा पढ़। एक बाबा जी आए बाबा जी के पास हजरत बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए बाबा जी नहीं एक साहब आए कहने लगे हजरत मुझसे गुनाह बहुत हो जाते हैं पर मैं तेरे दुश्मन बहुत हैं। उसे भी फरमाया पहली रकात में अलम नशा दूसरी में अलम तरा कैसा पढ़। एक और साहिल आया मेरा एक मुशाहदा है बाज ना फुकरा पे बाज वकात बाज वजायफ का हाल होता है फिर उनसे जिस मकसद के लिए वो निकल जाए वो हो जाता है। बाज वजायफ का हाल होता है बाज वकात बाज मौलिज ऐसे हैं वो सब आने वाले मरीजों को एक ही दवाई देते हैं और वो लोग ठीक भी हो जाते हैं वो उनकी तवज्जुहात कैफियत और दुआएं उसमें साथ असल में शामिल होती हैं और वही दवाई कोई और उठा के देते पर ना ठीक नहीं होता। ये वाकयात और वाकयात हैं जिंदगी में। एक और आया बंदा
شیخ کی خدمت میں.
اس نے کہا حضرت ہر وقت بیمار رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، تکلیف میں رہتا ہوں، ہر وقت بیمار رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، تکلیف میں رہتا ہوں. فرمایا پہلی رکعت میں علم نشرہ، دوسری میں علم ترک ایسا پڑھ. ایک اور آیا، انہوں نے کہا حضرت میرے قرضے بہت ہیں. فرمایا لگتا ہے تیرے دشمن بہت ہیں، جنات تیرا مال کھا جاتے ہیں اور چرا جاتے ہیں. انہوں نے حضرت کیا کروں؟ فرمایا سورۃ علم نشرہ علم ترک ایسا پڑھ ہر نماز کی رکعت میں. ان چیزوں سے بچ سکیں، ورنہ پیسے چوری ہونا تو عام سی بات ہے گھروں میں، لاک، تالے، تالے کے اندر تالا، اس کے اندر تالا، الماری کے اندر الماری، اور چابی میرے پاس ہے ہر وقت اور تالے لگے ہوئے ہیں اور اندر پیسے نہیں. کیوں جی، ہوتی ہیں پیسوں کی چوریاں؟ آپ نے کبھی سنی ہیں؟ اس دن ہمارے ملتان کے شاہ صاحب ہیں، مجھ سے کہنے لگے 35 کلو کا بچہ آخر کار انہوں نے سرجری کر کے نکالا، وہ عجیب الخلقت بچہ تھا. کتنا وزن تھا اس کا؟ 35 کلو، اور حمل تھا 4th مہینے کا. کون کہے گا؟ کہے گا طارق دیوانی باتیں کرتا ہے. بھائی میری دیوان، اگر دکانداری بھی مطلوب ہے تو اس دکانداری کے بعد میں بیچنا کیا چاہتا ہوں؟ یہی علم نشرہ علم ترک ایسا پڑھ. سوچو تو صحیح بھائی، دکانداری ہی ہے اور ایمانداری نہیں ہے میرے اندر، پھر دکانداری کا ریزلٹ کیا ہے؟ آپ کو دینا کیا چاہتا ہوں اور آپ سے لینا کیا چاہتا ہوں؟ کچھ تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں اس بات کو، اس کا مطلوب میرا کیا ہے اور میں چاہتا کیا ہوں. پینتیس کلو کا بچہ، عجیب و خلقت بچہ تھا، عجیب و غریب اس کی شکل تھی، نہ بندر نہ خنزیر نہ جانور، پتہ نہیں کیا کچھ بچہ تھا. اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ وزن تھا، کچھ بیشی ہو سکتی ہے اگر میرا حافظ ٹھیک کام کر رہا ہے تو. اور اس سے ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کچھ عجیب و غریب چیز آتی ہے اور بس مجھے ناپاک کر جاتی ہے، اور یہ اس کے بعد یہ ہوا. گھر سے دیواریں ختم ہو گئی، ہمارے ارد گرد حفاظت کا حصار، حفاظت کا قلعہ وہ ختم ہو گیا، ہم نہتے ہو گئے. ہمارے گھر گھر کے ہر جگہ سے جنات کی، شیاطین کی گزر کہیں ہیں، لانگیں گزر گائیں ہیں، گزر گائیں ہیں، اور وہ پھر ہمیں نقصان دیتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں. مائیں عام طور پہ خیال نہیں رکھتی کہ بچی ننگے سر ہے اور کیسے ہے اور کس طرح ہے، پھر وہی بچی درد سر بنتی ہے، میرے پاس لاتے ہیں کہ بچی ہے گھر کی دہلیز پار کر گئی ہے، اور بچی ہے کہتی ہے میری ابھی شادی کرو، چھوٹی سی بچی کہتی ہے، اور وہ بچی ہے گھر میں سکھ کا سانس، سکون کا سانس نہیں لینے دیتی، اور وہی بچی ہے جو زندگی کا وبال ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اس کے ریزلٹ ہیں، اس کے نقصانات ہیں. ساری چیزیں کرنے کے بعد تقدیر کا نظام ہے، وہ اللہ ہی قادر ہے، لیکن اپنے طور پہ حفاظت کا نظام تو کر کے دیکھیں، کرتے ہی رہیں، حفاظت کا نظام تو کرتے ہی رہے. نظر بد کھاتی ہے، نظر بد کھا جاتی ہے، اور شیطانی نظر بد سے بچنے کے لیے آخری 6 صورتیں ہیں، اور ان کی چوریوں سے بچنے کے لیے. کوئی ہے آپ میں سے ایسا آدمی جس کے گھر میں چوری ہوئی ہو، یا جس کے پڑوسی میں چوری ہوئی ہو، جس کو چوری کا پتہ ہو، جنات کی چوری؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے. ایک دو اور ہیں کوئی؟ بہت سارے ہیں. کیا چوری ہوا؟ $35,000 چوری ہوا، 3 تالے لگے ہوئے تھے. ہاں آپ جیب سے پیسے نکل جاتے. مجھے عبدالوحی سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ کہنے لگے, میں نے صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میری جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں. صوفی صاحب کہنے لگے, معوذتین, فلک اور ناس 200 دفعہ صبح شام پڑھ, تیرے مسئلے حل ہو جائے گا. عبدالوحی سلیمانی صاحب نے مجھے خود کہا رحمۃ اللہ علیہ, کہنا میں پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا, میری جیب سے پیسے نکل جاتے تھے. میں نے صوفی عبداللہ صاحب سے عرض کیا, انہوں نے کہا کہ سورۃ فلق 200 دفعہ صبح پڑھ اور سورۃ ناس 200 دفعہ شام پڑھ. پڑھنا شروع کر دیا, جی جیب پہ پیسے نکل جاتے. چیز گم ہو گئی پھر وہیں سے ملی. جی چیزیں گم جاتی ہیں اور پھر ڈھونڈنے ملتی ہیں. جی تین لاکھ, تین دفعہ کہتے ہیں پیسے غائب ہوئے. ایک لاکھ, ایک دفعہ 1 لاکھ, دوسری دفعہ 70,000, ایک دفعہ 35,000. جی کوئی مہمان آ جائے تو چوریاں ہوتی, تو مہمان آ جائے کیا ہوتا ہے, شرمندہ ہو جاتے ہیں. مہمان کی چوری ہوتی ہے, مہمان کہے گا انہوں نے چوری کی. میں ایک جگہ مہمان گیا, ہیڈ پنجند ہے وہاں, ایک گبول ہے, بلوچوں کی ایک قسم ہے گبول, ان کے ہاں میں دو چار اور احباب بھی تھے. ان کی راڈوں کی گھڑی گم ہو گئی, بار بار مجھ سے پوچھا حکیم صاحب آپ نے گھڑی نہیں دیکھی. مجھے ایسی شرمندگی, آپ نے گھڑی تو نہیں دیکھی, یعنی ہے تو نکال مہربانی کر. اور مجھے پریشانی ایسی, میں نے کہاں رکھی تھی, کیا نہ رکھی تھی, آپ نہیں دیکھی, آپ نے نہیں دیکھی نا, اگر آپ نے کوئی دیکھی ہو, کسی نے اٹھائی ہو تو وہ بتا دیں. سی شرمندگی, مجھے پریشانی ہوئی کہ یا اللہ اب تو ان کی گھڑی دے دے, اور دے دے مولا مجھے, یہ تو تعلق کی جگہ ہے, ان کے دل میں بدگمانی آ جائے گی کہ طارق نے گھڑی اٹھائی ہے. اچھا پھر گھڑی ملی, اور ملی کیسے, ذرا میں ان کی باتیں سن لوں. جی کتنے سال سے, 20 سال تک ہمارے گھر سے پیسے چوری ہوتے ہیں. ہاں اب ہوتے ہیں, جب سے تسبیح خانے کی نسبت, 20 سال سے گھر سے پیسے چوری ہوتے رہے. جی بہت دفعہ والدہ کا بند تالو میں سونا چوری ہوا ہے, یہ تو بڑے واقعات. جی پیٹی کے اندر گلا رکھتے تھے, اور وہ گلا جس میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, اور پھر اس میں سے نکالتے بھی توڑ کے ہیں, لیکن جب اس میں سے دیکھتے تھے 100-200 غائب ہوتے تھے. اک بھی سجاک رہ گئی, دیوا بھی پلتا رہ گئی, اٹا مٹورے چوالی نکلتا رہ گیا. اب کس کو میری بات سمجھ آئے گی, آنکھ بھی سجاک رہ گئی, دیوا بھی بلدا رہ گئی, یہاں تک سمجھ آئی, آنکھ بھی کھلی رہی, چراغ بھی چلتا رہا, اٹا مٹورے چوں مٹکے میں سے آٹا پھر بھی نکلتا رہا, یہ سمجھ نہیں آئی. جی آدھی چیزیں پڑی آدھی غائب ہیں. تسبیح خانے آنے کی برکت سے یہ بیماریاں ختم ہوئیں, یعنی یہ چوریاں ختم ہوئیں. یہ واقعات ہی واقعات ہیں. جی ہاں چوری ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں لاک لگا ہوتا ہے چوری ہو جاتی ہے. جی الماری کے اندر لاک, لاک کے اندر لاک, تجوری کے اندر لاک, پھر چابی بھی ان کے پاس ہوتی تھی. سارے گھر میں ایک دوسرے پہ شک کرتے تھے. طلاقیں ہوئی ہیں میرے سامنے, واقعات ہیں, جھگڑے ہوئے ہیں, زخمی ہوئے ہیں, جیل میں گئے ہیں, ہسپتال میں گئے ہیں, نہ اس نے چوری کی ہے نہ اس نے چوری کی ہے. جی ایک سیف کا تالا, اس کے اندر بیگ, اس کے اندر بھی تالا, پیسے چوری ہو گئے. لوگ ہیں. کہتے ہیں جب سے صبح کی فجر میں 6 سورتیں پڑھنی شروع کی ہیں تب سے چوری نہیں ہوئی. آپ بتائیں تسبیح خانہ آپ کو دے کیا رہا ہے؟ تسبیح خانے سے امت پا کیا رہی ہے؟ ان سے کون لڑے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان چوری کرنے والے سے کون لڑے گا؟ ہمارے دوست ہیں یہاں لٹن روڈ میں، ان کا گھر والد صاحب کا تھا. وہ کہتے ہیں ہمارے کچن میں ایک الماری میں ایک جگہ تھی، جنات وہاں اپنی چیزیں پیسے رکھ جاتے تھے اور پھر لے بھی جاتے تھے. بس وہ رکھ جاتے تھے اور لے جاتے تھے. جی آپ ہیں؟ ہاں. کہتے ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہماری چچی کہتی تھی کہ میرے ہاتھوں میں سے پیسے نکل جاتے ہیں. اسی سمجھنے کے جھوٹ بول دی. بھئی ہمیں سمجھ نہیں آئی. یعنی ایک صاحب نے مجھے آ کے بتایا صابن غسل خانے میں میرے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. یہ واقعات میرے پاس ہے. بھئی غسل خانے میں پیٹرپ کی جالی میں سے صابن کیسے نکل جائے گا اور کہاں جائے گا؟ پھر غسل خانے کے اندر چار پائی نہیں ہے، پیٹی نہیں ہے، چلو کچھ اندر چلا گیا ہو بندہ جھانکے. کوئی غسل خانہ ایک کھلا میدان ہے، اس میں کہاں جائے گا صابن؟ صابن چلا گیا. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ گوشت کے لیے میں نے روٹی پہ بوٹی رکھی، دیکھا تو بوٹی نہیں ہے، اکیلا میں ہی تو بیٹھا ہوں، بوٹی کہاں ہے؟ روٹی پہ بوٹی رکھی کھانے کے لیے، دیکھا تو بوٹی نہیں. اب دیکھیں 6 سورتیں پڑھیں. یہ موضوع میرا کچھ جمعراتوں میں چلے گا. میرے جی میں ہے کہ یہ جو اس وقت ہمارے دشمن ہیں نا اصل، ان کو تو ہم نے پہچانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں. اور جو دشمن تھے نہیں ان کو دشمن بنا لیا اور لڑ رہے ہیں، اور نفرتوں کے اندر پہاڑ، سیاسی نفرتیں، مذہبی نفرتیں، علاقائی نفرتیں اور قومی نفرتیں. رشتہ کرنا ہے تو اسی قوم میں کرنا ہے. بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، انہوں نے جی ہمارا تو قوم کے اندر کے بغیر رشتہ کرتے ہی نہیں ہیں. قوم کے اوپر رشتہ کریں گے، کریں گے تو یہی کریں گے. 6 صورتیں اور کس نے آزمائی؟ 6 صورتیں، آخری 6 صورتیں. وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے ہمارا تجوری تھی، لاک تھا، بیگ تھا، اس کے اندر لاک تھا اور پھر بھی چوری ہو جاتی تھی، اور جب سے 6 صورتیں پڑھنی شروع کی سنتوں میں، اس دن سے اللہ پاک کا نظام چوری سے حفاظت مل گئی. آخری 6 صورتیں. اور کوئی اس کا فائدہ بتائے جس کو آخری 6 صورتوں کا فائدہ ملا ہو اس کے علاوہ بھی؟ جی کہتے ہیں میں نے 6 صورتیں جب سے نماز میں پڑھنی شروع کی ہیں زندگی میں سکون آ گیا. اور سکون ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں تو سکون آتا ہے. جی فریج میں سے ٹک ٹک کی آوازیں آتی تھی، 3 دفعہ مکینک کو بلایا. جب سے 6 صورتیں پڑھ کے پھونکنا شروع کیا اس دن سے آوازیں آنا ختم ہو گئی. جی اور 6 صورتیں بتائیں. جی کہتے ہیں جن دنوں میں نماز میں 6 صورتیں پڑھتا رہتا ہوں بچے بیمار نہیں ہوتے، مال سرمایہ چیزیں دواؤں میں نہیں لگتی، سائی سائی رات رہ کے بچوں کو روتے بچے، نہ ماں سوئی نہ باپ سویا نہ بچہ سویا. اور جس وقت ماں کے سونے کا وقت آیا بچہ اٹھ گیا، جس وقت ماں کے اٹھنے کا وقت آیا بچہ سو گیا. جی پھر اب کہتے ہیں مجھے فسچولا تھا، والد کو بھی تھا. بھکندر پھوڑا ہوتا ہے جو پخانے کی جگہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے آپریشن ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اس وقت سرجری کرتے ہیں ٹھیک، پھر ویسی پھر ویسی. والد صاحب اسی بیماری میں مر گئے کہتے ہیں، اور میں بھی بچپن سے 55 यही बीमारी थी अब कितने डेढ़ साल से, डेढ़ साल से ये सूरतें पढ़ी है मैंने छह और अलम नशर अलम तरह कैफा पढ़ी है, अब मैं ठीक हो गया हो जाएगी। अब बताएं ये बीमारी कहां से आती है, ये जिन्नाती शैतानी चीज रोग कहां से पैदा होते हैं, मेरे किस्से अफसाने हैं क्या, मेरी बातें ऐसे जी जी कहते हैं जब से इन सूरतों का सुन्नतों में अमल किया है नवाफिल और सुन्नतों में, घर में ना बीमारी है, घर का पूरा हिसार हिफाजत है, कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह ने गैब के खजाने से सब जरूरत को पूरा किया और अल्लाह ने सब निजाम को बेहतर किया जब से ये अमल शुरू किया जी। कहने लगे मैंने रूहानी गुसल करने से पहले ये छह सूरतें पढ़ी, फिर गुसल किया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिन्नात कटे हुए हैं, उनकी गर्दनें, उनके बाजू, उनका जिस्म कटे हुए हैं जी। सात साल की बेटी है उसको छह सूरतें पढ़ने की आदत पड़ गई, उससे पहले जिद में रहती थी, अब कहती है कि पहले ये सुनाएं फिर सोऊंगी, जिद खत्म और सारी झगड़े और सारी कहानी खत्म और जिंदगी में सुख और सुकून जी। अब बोले जी कह रहे दो तीन बच्चियां ऐसी जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, उन्हें सुन्नतों में और नफल में, और खवातीन तो नमाज की हर रकत में पढ़ सकती हैं, जमात की अगर नमाज है तो इमाम के पीछे तो किरत नहीं है, आप अगर अपनी तनहा कोई नमाज पढ़ रहे हैं तो अपनी नमाज में पढ़ सकते हैं। कहने लगे जब से यह पढ़ना दिया बच्चियों के रिश्ते हो गए। कौन सी चीज थी जिसने बच्चियों के रिश्तों में रुकावटें डाली हुई थी, वो कौन सी चीज थी, आज जिस दुश्मन को मैं बयान कर रहा हूं, आज मैं जिस दुश्मन को बयान कर रहा हूं उस दुश्मन को तो पहचानो। और बताएं जी छह सूरतें हां कहने लगे जब सफर में जब निकलता हूं ये सूरतें पढ़ता हूं अल्लाह सफर आसान कर देता है जी। काम पे जाता हूं ये अल्लाह वाले कहते हैं पढ़ लेता हूं सारा दिन काम आसानी से पूरा हो जाता है। कहते हैं मोटरसाइकिल के पहले एक्सीडेंट बहुत होते थे, चलान बहुत होते थे, जब से इन सूरतों का एहतमाम किया अल्लाह ने आफियत हिफाजत किफायत किफालत बरकत फरमा दी। दुश्मन तो कोई और था, हम किसी और को समझ बैठे। उन्होंने कहा शैतान सारा कुछ तेरा किया हुआ है। उन्हें मैं क्या करता हूं, मैं तो थोड़ा सा ऐसे वसवसा ही डालता हूं। उन्हें वो कैसे, कह रहा हूं अब तुम्हें एक मैं कहानी सुनाता हूं। एक हलवाई की दुकान पे गया, शैतान ने क्या किया, जिन ने मिठाई का शीरा था ना थोड़ा सा उठा के ऐसे दीवार पे छींटा मार दिया, छींटा मारा मक्खी आके बैठी, छिपकली आई मक्खी को पकड़ने के लिए, एक बंदा था उसके साथ बिल्ली थी, बिल्ली झपटी छिपकली पे, एक बंदा उसका कुत्ता था, कुत्ता झपटा बिल्ली पे, थाल हो गए ऊंधे। हैं? थाल तो सारे ऊंधे होने थे, एक जंग होगी ना कुत्ते और बिल्ली की जंग हुई, वो उसमें झपटी छिपकली पे और वो कुत्ता बिल्ली पे और एक जंग, और वहीं खड़े खड़े एक बंदा हो गया कत्ल। उन्होंने ये क्या हुआ, उन्होंने कहा बता मेरा क्या कसूर है, मैंने तो सिर्फ उठा के एक छींटा था वो दीवार पे फेंका था और उस पे मक्खी बैठी और वहां छिपकली आई और बिल्ली आई और कुत्ता आया उसने कहा तेरा कुत्ता, उसने कहा तेरी बिल्ली, उसने कहा तेरा कसूर, और कशमकश होते हुए मैंने फिर उनके दिल में इंतकाम कीना गुस्सा डाला, और फिर एक और सिलसिला कत्ल का हो गया, और कत्ल के बाद फिर हमेशा की दुश्मनियों की एक दास्तान चल पड़ी।
ये जिंदगी हम समझते ही नहीं, ये जिंदगी है, हमारे ये दुश्मन है, और इन दुश्मनों से हिफाजत हमारी जिंदगी में जरूरी है, और वो कलाम इलाही के बगैर हो नहीं सकती, वो हो नहीं सकती। लिख लें जितने समझदार और जितने पढ़े लिखे हैं आप, मेरे पास बड़े बड़े पढ़े लिखे नाकाम आते हैं, पढ़े लिखे नाकाम आते हैं पढ़े लिखे। चलो एक सवाल का जवाब आपसे है, जैसे हम आज कुछ बातें हो रही हैं, सुन सुना रहे हैं, आप ये बताएं, कभी किसी मदरसे के तालिब मौलवी, मस्जिद का मुअज्जिन और मस्जिद का खिदमत करने वाला, अजान देने वाला, कभी इसके खुदकुशी के वाकयात ज्यादा सुने हैं या यूनिवर्सिटी और कॉलेजों और डिग्री वालों के ज्यादा सुने हैं? डिग्री वाले, यूनिवर्सिटी वाले, आला तालीम वाले, ताजर, बड़े बिजनेस वाले, बड़े समझदार, पढ़े लिखे, सॉफ्टवेयर के, फलां के, फलां के, क्यों? जवाब दे, उस बेचारी की तनख्वाही बड़ी थोड़ी होती, सोचें तनख्वाह थोड़ी, और जरूरियात हमारी जितनी, जितनी हमारी है जरूरियात हमारी जितनी, तनख्वाह बिल्कुल थोड़ी। मेरे पास वो मस्जिद के हमारे बच्चे को पढ़ाने आते हैं कारी साहब, मैंने कहा कारी साहब बच्चों को पढ़ाना है क्या लेंगे, कह रहे जो आप दे देंगे। तो मैंने कहा कि कितना लेंगे, कहने के 3,000। मैं कहा इतना ज्यादा, नहीं जो आप दे दें, मैं उसको 7,000 दे रहा हूं, और नदामत है, शर्मिंदगी है। आधा घंटा वो देते हैं टाइम, 40 मिनट, आधा घंटा तकरीबन, उसमें शर्मिंदगी है। उस दिन बैठा सोच रहा था, मैंने कही तो बहुत थोड़े पैसे, अल्लाह के नाम की इतनी तासीर, अल्लाह का नाम की इतनी अजमत, और मैं, मुझे मेरे बच्चों को चल के जाना चाहिए था, असल अजमत ये है, मुझे चल के जाना चाहिए था, और वो बंदा चल के आ रहा हूं, और मैं उसकी इतनी कदर भी नहीं कर रहा। ये मैं किस्सा अपना सुना रहा हूं, कुछ आपको भी थोड़ा सा झंझोड़ रहा हूं। सुनाना बेटी को है, बताना बहू को है। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये लोग, आपने देखा होगा बड़ी खतरनाक बीमारियां, खुदकुशियां, तलाक के मसाइल, ज़हनी उलझने, टेंशन, टेंशन की गोलियां, ये तबका जो है ना, ये तबका हलवे मांडे वाला तबका जिसे हम कहते हैं, वो ये तबका इससे बचा हुआ है। आप कभी महसूस करें, ये पता है मुझे किसने ये बात कही, बहुत बड़े डॉक्टर आते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उसने मुझे ये बात कही, बड़े जबरदस्त सूटेड बूटेड, क्लीन शेव, लाजवाब, बड़ी खुशबू लगाते हैं, और बड़ी लाजवाब गाड़ियां चीजें, अल्लाह ने बहुत नवाजा है। मुझसे कहने लगे कि मैंने एक रिसर्च की है, ये मस्जिदों और मदरसों वाले खुदकुशियां, तलाके, लाइलाज बीमारियां, ज़हनी उलझने, टेंशन, एग्जाइटी, स्ट्रेस, और बड़े बड़े मसाइल, हादसा, लगी ये ऐसे ही बैठे बैठे सो जाते हैं, और चटाई पे बैठे सो जाते हैं, सर रखते हैं सो जाते हैं, लगे बस। अगर मैं हसरत से देखता हूं कि किसने, इसने कौन सी ऐसी गोली खाई है, चिंगम खाई है, कोई गोली खाई है, ये बेचारा चिंगम खा के भी सो रहा है, वो तो क्या कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज है, क्या ख्याल है ऐसा है या नहीं है? ये तबका इन बीमारियों, तकलीफों, मुसीबतों,
कोई आप में से 100 में से एक वाक्य सुनेंगे, यानी एक तरफ सारा पढ़ा लिखा ताजर तबका, उनके वाकयात अगर 100 होंगे तो 100 में से लाइन में एक ऐसा लगा हुआ बंदा होगा जो इस तबके में से होगा। वो ये क्या वजह है?
इसकी एक वजह है,
इनकी निस्बत कलाम के साथ है, इनकी निस्बत मस्जिद के साथ है, इनकी निस्बत मुसल्ले के साथ है, इनकी निस्बत चटाइयों के साथ है, और इनकी निस्बत तदरीस हदीस अल्लाह के फरमान मदीने वाले के फरमान के साथ है। वो निस्बतें कलाम इलाही वो इतनी है खुद टुकड़े बेच के खा जाते हैं। इतना रब देता है, कहने लगा हम थे दो भाई, भाई बना MBBS डॉक्टर, मैं हाथ साथी मौलवी बन गया।
कौन सा मौलवी?
हाथ साथी। कोई ऐसा माहौल मिला, मैं बन गया वो। मेरा भाई मुझे कहते था ओए होए, अब तो टुकड़े मांगेगा गलियों में, बीबी रोटी दे जाओ। वो एक बंदा आता था, वो रोटी लेके कहता था, ऐसे हाथ उठा के कहता था अजमाइन। उन्हें कहा तू कहता क्या है? वो कहता था अल्लाह रब्बी हाथ च मुंगर काचे छब्बी अजमाइन। मुंगर कहते कटोरे को, अल्लाह रब्बी हाथ च मुंगर काचे छब्बी अजमाइन, चल जा। अल्लाह अकबर। चुटकुले सुनाता रहूं तो सुभान अल्लाह, कुरान हदीस सुनाऊं तो गए। ये तबका वो तबका है, मैं आपकी खिदमत में दरखास्त कर रहा हूं, जिनकी निस्बत इन 6 सूरतों के साथ, जिनकी निस्बत इस कलाम इलाही के साथ, जिनकी निस्बत इस अल्लाह के नाम के साथ, जिनकी निस्बत अल्लाह की नाम की बरकतों के साथ, ये बचा रहता है। हालांकि मस्जिद में जिन्नात के वाकयात दर वाकयात होते हैं, नेक जिन्नात आते रहते हैं। एक साहब मुझे आके कहने लगे, एक मस्जिद के खादिम हैं, खादिम का कसूर की साइड के गांव है, वहां रहते हैं, अब भी आते हैं। मुझे कहने लगे माशाल्लाह जी, ये आपकी बेटी है जी? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे मैंने दूसरी शादी की है। अच्छा, मस्जिद के मौलवी खादिम की कभी शादी नहीं रुकेगी, लिख लो तजर्बे। ये भी मेरे मुझसे आप तजर्बे पूछ लो। मौजन खादिम मदरसे का, कोई मौलवी कोई मस्जिद मदरसे का, इनकी शादियों के मसाइल, इनकी शादियां, और बच्चे भी बेबहा होंगे, कसीर मिनत कसीर होंगे। आप देखिए जरा, ये बाजार एक लतीफा है, लेकिन इस लतीफे के पीछे मैं हकायक बयान कर रहा हूं। ये आखिरी 6 सूरतें जो आप हजरात ने बताई हैं, और आखिरी 6 सूरतों के जो कमालात हैं, मैं कुरान की तासीर बयान कर रहा हूं। इन लोगों की निस्बत मेरे आका का फरमान हदीस और मेरे रब का फरमान कुरान के साथ है। ये निस्बत ऐसी है, अल्लाह गैब से खिलाता है, अल्लाह गैब से पिलाता है, और अल्लाह इतना देता है, इतनी रोटियां देते हैं कि ये टुकड़े बेच के भी खा जाते हैं। अल्लाह खिलाते है। वो कह लेंगे जो मैं हाथ साथी मौली बना, और मेरा भाई मुझे कहता है कि तू तो मेरे को चंगा रही। अल्लाह उसको खिला रहा, अल्लाह उसको पिला रहा, अल्लाह उसकी जरूरतें पूरी कर रहा, अल्लाह गैब से। और दूसरा, मस्जिद के मौलवी मदरसे के मौलवी के साथ एक बरकत होती है, तनख्वाह 7,000-8,000, बड़े से बड़ी कुश्ती लड़ी तो 10,000, हाँ या थोड़ी सी से ज्यादा या कम, लेकिन जरूरतें सारी पूरी हो रही है। ये अल्लाह इस कलाम की बरकत से बरकत देता है, कलाम की बरकत से बरकत देते, अल्लाह दिखा रहा है, ये अल्लाह दिखा रहा है, ये अल्लाह हमें नजर आंखों के सामने हकायक बता रहा है। आप किसी अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं ना, जिसके जिसको घर में ना रहने दें वो मस्जिद के आके खादिम की मौली साहब की बेइज्जती करता है, जिसको मस्जिद में कोई ना घर में टिकने दे। एक बार मैंने एक दफा देखा कि वो मस्जिद के खादिम को डांट रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई रिटायर्ड अफसर है? कह रहे हाँ। मैंने कहा क्यों पूछा? मैंने कहा बस वो ठीक क्योंकि घर में तो अफसरी चल नहीं सकती। बहू कहते हैं ना करीब जाना, बाबे दे बलगाई में लिपट जाएगा, बाबा जी के पास जरासीम है, अब वो अफसर तो है, तो उसके लिए वाहिद फिर वो मस्जिद का बेचारा खादिम ही है। हमारे मोहसिन है मौलाना उस्मान साहब, वो कहने लगे कि ये मुझे एक बंदे से मिलवाया, कहने लगे ये आते हैं हर दफा कहते हैं कोई मस्जिद का मौलवी साहब है, हर दफा बदलते रहते हैं, कह रहे ठीक नहीं है ठीक नहीं। मैंने कहा जी अभी मैं फिर उनसे मैंने कहा जरा आप ठहर जाएं, तो मैं फिर एक साहब हैं वो मानेंगे तो नहीं लेकिन मैं आपको उसको फिर मिन्नत करता हूं आप फिर आइएगा। फिर कुछ अरसे के बाद आए, फिर आए तो मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूं, उन्हें कहा है कौन, कहने कहा जिब्रील है, कोशिश कर रहा हूं देखें अगर आ जाए। कुरान के साथ हमारी निस्बतें, कलाम इलाही के साथ, देखें सिर्फ अलम नशरा पढ़ी है, अलम तरकैफा पढ़ी है, सिर्फ आखिरी छह सूरतें पढ़ी हैं, जिन्नात और शयातीन के शर के दरवाजे बंद हो गए हैं। वो बंदा कह रहा है कितनी बच्चियों की शादियां नहीं होती थी या मलकिया शादियां हो गई। कोई कहता है कि मेरी जिंदगी में सुकून आ गया, कोई कहता है जिस दिन पढ़ता हूं घर में दवाई बीमारियां खुद आती नहीं, इधर पढ़ना छोड़ देता हूं घर में दवाइयां और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ये क्या बात है, अपने दुश्मन को तो हमने पहचाना ही ना और दुश्मनों को देखा ही ना कि दुश्मन है कौन, और दुश्मन के असल रोग की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं गई, हमने तो दुश्मन तो कोई और समझ बैठे और उनसे लड़ाइयां और उनसे जिंदगी की मुखालफतें और सारी जिंदगी का सुकून हमने अपने आप को अपने आप से छीन लिया। मैंने आपको बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की बात नहीं सुनाई, जो आ रहा था फरमाते थे अलम नशरा अलम तरा कैसा पढ़, तेरे दुश्मन है तेरे दुश्मन है तेरे दुश्मन। हमारे यहां एक माई आती थी, माई वो कहती थी पुत्रा दुआ कर मेरे दुश्मन बहु है, पुत्रा दुआ कर, हर बंदे को वो कहता था मेरे दुश्मन बहुत है मेरे दुश्मन बहुत, क्योंकि वो सारी दुनिया उसकी मुखालिफ और उसकी दुश्मन थी, वो सबकी दोस्त थी। मुझे आज समझ आया कि माई तो पता नहीं जिस लहजे में कहती थी सो कहती थी, पर आपके दुश्मन वाकई बहुत है, शयातीन जिन्नाओ ये ऐसे दुश्मन हैं जो सुख का सांस ना लेने देते हैं ना सुखी देखता अच्छा कहते हैं कि सुखी नहीं है सुखी नहीं और सुकून से है ही नहीं, और ये सुकून से क्यों है इसको सुकून से हम नहीं देख सकते, लिहाजा इसको बीमार तकलीफ परेशान मसाइल मुश्किलां नाकामियां उलझने इसमें फंसाए रखो और इसी के अंदर यह जिंदगी गुजारे। मैं तो चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए और चैन आ जाए, वरना याद रखिएगा घर का सारा खाना और घर की सारी जरूरत और घर का सारा निजाम ये चीजें खा जाएंगी, सारी के सारे निजाम ये घर नस्लों को खा जाएंगे, नस्लों को खा जाएंगे। सीने पे जो बंदा लफ्ज उमर लिखे उस रात नापाक नहीं होता, नाफ पे जो लफ्ज उमर लिखे और उमर की मीम नाफ के अंदर आए उस रात नापाक नहीं होता। क्यों? किताबों में आता है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस गलियों जिन रास्तों से गुजरते थे जिन्नात शयातीन वो रास्ते बदल लेते थे और रास्ते बदल लेते थे। वो रास्ते बदल लेते थे, वो जिंदगी के राज हैं कुछ ऐसे जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिंदगी कुछ राज ऐसे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। कहने लगे कि हमारी अम्मा जो हैं हम गांव से आते थे शहर में, हमें पेशाब करा देती थी, बार बार कहती थी जाओ पेशाब करो, फिर तुम कहोगे पेशाब है मैं शहर में कहां से लेटरीन टॉयलेट वगैरह ढूंढूंगी। फिर अगर हमें पेशाब आता था हम कहते थे अम्मी पेशाब आया है, अम्मी कहती थी अपना लुआब लेके नाक में लगा लो पेशाब रुक जाएगा, लुआब लेके ना नाक में लगा लो। कह रहे हम अपना लुआब लेके नाक में लगा लेते थे, वो पेशाब की शिद्दत ठहर जाती थी। थोड़ी देर पर कहते अम्मी पेशाब आया, कह रहे लुआब लगाओ, लुआब जल्दी करो थूक लगा, कह रहे थूक लगाते थे। ये और वाकई टोटका है, खास तौर पे बड़ा पेशाब है, अब भी अजमाए तो ठीक हो जाता है। ऐसे टोटके ले आओ ये जिंदगी में सुकून का जरिया बने। और सारा कुरान इन्हीं खैरों से भरा हुआ है, सारा कुरान इन्हीं राहों से, इन्हीं खैर की राहों से भरा हुआ है, और सारा कुरान इन्हीं बरकतों से भरा हुआ है। आप खुद सोचें कि सारे कुरान की तो तासीर अपनी जगह पे, जिन सूरतों का हम तस्करा कर रहे, इन सूरतों की तासीर कितनी है और कितनी ज्यादा है, ये तो इन सूरतों की तासीर है, सारे कुरान में कितनी होगी और कितना ज्यादा होगी, और सारे कुरान के कितने ज्यादा कमालात और बरकात होंगे, और सारे कुरान की कितनी ज्यादा खैरें होंगी। सोचे हत्ता के यहां तक है कि जब बच्चा पैदा होता है, इधर एक शैतान भी उसके साथ पैदा होता है, शैतान भी पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है शैतान भी पैदा होता है। आग तक तो लगा देते हैं घर में, आदेश में आया है कि अपनी चिराग की बत्ती को बंद करके सो, चूहिया आती है पकड़ के ऊपर ले जाती है, और वो शैतान की शक्ल में। अरे मेरे वाले मेरे नाना जी जो है रहमतुल्लाह अलैह आमिल थे, और उनके साथ एक आमिल थे, वो काले जादू के आमिल थे। पहले वो काले जादू के आमिल थे मेरे नाना, सगे नाना, 1973 फौत हुए 74। तो अल्लाह पाक ने फिर जिंदगी बदली, बहुत नेक थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, एक साहब की सोहबत थी, वो साहब अकीदे के एतबार से ठीक नहीं थे, उनकी वजह से वो काली दुनिया में। फरमाते थे कि काली दुनिया में कुछ साल में रहा हूं तो मुझे उसका फायदा यह हुआ है कि मुझे अमल का पता चल जाता है कि यह अमल काली दुनिया का है या नूरी दुनिया का है, और बंदे का पता चल जाता है। उन्होंने उल्लू को बुलवाया था, 40 दिन उल्लू पिंजरे में था, शिफ्टें लगी हुई थी 3 बंदों की, और उसमें बैठ के पढ़ते थे, एक लम्हा भी पढ़ाई नहीं खत्म होनी थी, और उसको गिजा देते थे उल्लू तंत्र। फरमाने लगे, ये मैंने देखा नहीं, उन्होंने फरमाया, अम्मा रहमतुल्लाह भी फरमाती थी, मैं कि 40 दिन के बाद उल्लू बोला कि हाँ भाई क्यों मुझे परेशान किया, बोलो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा तेरे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं इनके फायदे बता। उसने कहा मेरे परों के ये फायदे हैं, मेरी जुबान के ये फायदे हैं, अगर जुबान को खुश करके पीस लिया जाए तो ये फायदा है, मेरी आंख का ये फायदा है, और मेरे गोश्त का ये फायदा है, और मेरी पंजों का ये फायदा है, और मेरी बीट का ये फायदा है। फायदे बताता गया। जब सारे फायदे उसने बता लिए तो एक पल में उठा के तेज धार एक साथ छुरी थी उसका सर जुदा कर दिया। कहने लगे इसके बाद ये कहेगा कि तू अगर मेरे पास आ जा तो ये फायदा है कि मैं तुझे खा जाऊं, और बातें करने वाला बंदा उसी वक्त मर जाएगा। उसी वक्त उसको खत्म कर दिया। एक दफा उनका वाक्य सुना हुआ है, मैं नाने रहमतुल्लाह एक वाक्य सुना के फिर वो वाक्य सुनाता हूं। एक दफा उनका एक ही बेटा था, एक ही बेटी थी, एक बेटी मेरी वालदा थी, एक ही बेटा था जो 39 साल की उम्र में फौत हो गया। तो कमरे में थे और रुपया रख दिया, रुपए की बड़ी औकात, लगे कि इस कमरे में रुपया है, बच्चे थे हम भी थे बच्चे थे, जो बच्चा इस कमरे में से रुपया ढूंढ लेगा उसका है। अब कमरे में कुछ ज्यादा सामान भी नहीं पड़ा था, 2 चारपाइयां थी, एक अलमारी थी, बस और कुछ नहीं था। सबने एक एक चारपाई के पाए के नीचे भी जगह छान मारी, कहीं से रुपया ना मिला। उन्होंने कहा नाना रुपया नहीं है। नाना कहने लगा रुपया है और यही है, जिसके हाथ आएगा उसी को मिलेगा। सारे थक गए, आखिर नाना ने टोपी उतारी, उसके अंदर से रुपया था। ये तो खैर एक वाक्य। फिर उस टोपी रुपए की चीज लेके, शाय लेके, मिठाई सबको खिलाई। अब वाक्य सुने, इन सूरतों के बारे में बताऊं। एक दफा फरमाने लगे कि जब मैं काला मंत्र पढ़ता था तो जो बंदा मेरे सामने छह सूरतों वाला आता था, वहां मेरा काला मंत्र नहीं चलता था। अजीब बात बताऊं, वहां नहीं चलता था। और जो उनका दोस्त था उसकी मौत बड़ी भयानक हुई। मैंने उसकी मौत को यानी आखिरी दिनों में मैंने उसको देखा। नाना के तकरीबन 20-22 साल के बाद वो शख्स फौत हुआ, बड़ी लंबी उम्र पाके। नाना अलैह रहमत की निस्बत से मैं उनकी खिदमत करता था, पैसे चीजें अक्सर खिदमत करता था। सारे छोड़ गए थे उसको, सब छोड़ गए, बूढ़ा हो गया, हाथ हिलते थे, कमजोर था। उसकी मौत बहुत हुई। मैंने एक दो दफा कहा, मैंने उनको भी नाना कहता था, मैं नाना तौबा कर ले, अल्लाह बड़ा करीम है, और आप सिर्फ और सिर्फ सारा दिन दुरूद इब्राहिमी पढ़े या फिर एक चीज पढ़े, सारी पिछली खत्म हो जाएगी। और वो अल्लाह की तौहीद है, और वो सारी सूरत इखलास अल्लाह की तौहीद है। मैंने कहा सूरत इखलास कसरत से पढ़े। कहने लगे बेटा, एक तो मुझे बात कही और वो बात यहां चुभी हुई है, शायद मौत की हिचकी मेरी वो बात को खत्म कर सके, और जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कहने लगे बेटा, अब मेरे मुंह से जब बोलता हूं ना तो मंत्र निकलता है, सूरत कुल वल्ला निकलती नहीं है। और दूसरे लफ्जों में, शैतानी जिंदगी और शैतानी दुनिया इतनी आई कि रब ने अपनी कलाम की ताकत और तासीर और नाम उनसे छीन लिया। कह रहे मेरी जुबान से नहीं निकलता। अच्छा, मैंने कहा ठीक है नाना, मैं आपको बैठ के पढ़वाता हूं, आप पढ़ें। बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर रहमान ही पढ़ सका। वो उसकी जुबान ऐसी होगी जैसे कोई फालिज का मरीज नहीं होता। वो बोलता तो है, आपको समझ नहीं आती, और वो बेचारा थक जाता है। और मैंने बास फालिज के मरीज देखे हैं, वो रोने लग जाते हैं कि काश हम अपनी बात समझा नहीं पा रहे। वो रोने लग जाते हैं, हम अपनी बात समझा नहीं पा रहे। वो बंदा नहीं पढ़ सकता था, रब ने उसकी जुबान से अपना नाम छीन लिया और इसी जिंदगी में मर गया। इसलिए कहते हैं कि संगत देखा करें, दोस्ती देखा करें, सोहबत देखा करें, बच्चों की दोस्त देखा करें। बच्चे किन दोस्तों के साथ चलते फिरते हैं? फिर मेरे नाना ने फरमाया, अब अक्सर फरमाते थे, फरमाया मैंने सूरत इखलास की, सूरत मुल्क की और कलमे के, एक दफा फरमाने लगे मैंने कलमे के 100 से ज्यादा निसाब पढ़ लिए, 70,000 एक निसाब है, 100 से ज्यादा पढ़ लिए। फरमाया जो जितना अरसा मैंने वो काले मंत्र पढ़े थे उसकी कमियां पूरी कर रहा हूं। जो छह सूरतें पढ़ता है उसमें मेरा अमल असर नहीं करता। उसने कहा मैंने फला जगह शादी करनी है। उन्होंने कहा फला जगह एक मस्जिद है, उस मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ के आ जा, मैं तुझे फिर तावीज दूंगा और तेरी हर्ष मंशा शादी हो जाएगी। उसने कहा ये कोई मसला ही नहीं। उन्होंने कहा पर शर्त यह है 40 नमाजों की एक तकबीर उला ना चूके 5 नमाजों में। उसने कहा होगा, आशिक तो दीवाना होता है, आशिक तो पागल होते हैं। 40 नमाजें जब पढ़ी और 40 नमाजों के बाद जब आया आमिल के पास, बाबा जी के पास तावीज लेने के लिए, तो बाबा जी ने कहा हां तावीज चाहिए। उन्होंने कहा बाबा अब तावीज नहीं चाहिए। उन 40 नमाजों और 40 नमाजों के तकबीर उला और 40 नमाजों की तासीर ने मेरे ऊपर जो जिन्नाती नजर बद का काला जादू था, जिससे मैंने अपनी नजरों को हमेशा आलूदा और नापाक किया और अपने जज्बों को आलूदा और नापाक किया, वो अब टूट चुका है। अब कोई अल्लाह को देने वाला तावीज है तो दे दे, जो मुझे अल्लाह से मिलवा दे, इश्क मुस्तफा से मिलवा दे, कमली वाले से मिलवा दे, उसके हबीब से मिलवा दे, अब तक वो तावीज दे दे, बाकी कोई तावीज नहीं चाहिए मुझे, अब तो वो कोई तावीज है तो दे दे। हाँ, उसने कहा तो ऐसा कर कि तावीज चाहिए, शादी करनी है। हाँ, उन्हें अगर अगर शादी करनी है कि किसी मुसलमान को कत्ल करके उसका ताजा दिल ले आ, लेकिन इससे पहले पूरे 70 दिन ना नमाज पढ़ ना तस्बीह पढ़, और सारा दिन एक मंत्र देता हूं, वो पढ़ जो काली देवी का है और जिसकी वजह से तू अल्लाह और उसके हबीब और दीन से इतना दूर होगा जितना जमीन और आसमान। उन्होंने कहा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा ऐसा अमल करके दूंगा तेरी शादी हो जाएगी। उसने कहा तैयार हूं। वो करके उसने दे दिया और दिल भी ले आया, कुफर भी कर लिया, कत्ल भी कर लिया, दोनों कुफर कर लिए और दोनों गुनाहे कबीरा कर लिए, कुफर का गुनाहे कबीरा और कत्ल का गुनाहे कबीरा। उन्होंने दिल सामने रखा और दिल में सुइयां चबो रहा और सुई जा नहीं रही दिल के अंदर। उसने कहा तूने कोई नेकी की है? उसने कहा नहीं, मैंने कौन सी नेकी की है, पूरे 70 दिन कोई नेकी नहीं की, सब गुनाह किए हैं, सब गंदगी, गिलाजत, खबासत, निजासत, मेरा पल पल ना मैंने अस्तंजा किया छोटे पेशाब करके, कुछ भी नहीं किया। आपने खुद ही तो कहा था कि पेशाब आखिरी हाथ में लेके बदन पे छींटे मार लेने हैं, जितना नापाक रहेगा उतना मेरा मंत्र, मेरा जादू असर करेगा, सारा कुछ मैंने कर लिया। अब कहते हैं नेकी? उन्हें कहा ना, सुई अंदर नहीं जा रही, मेरे कई तजर्बे हैं। उन्हें कहा सोच। उन्हें कहा रास्ते में आ रहा था, एक जगह पत्थर गिरा हुआ था, मैंने कहा किसी मुसलमान को अटक ना जाए, मैंने वो एक तरफ किया था। कह रहे देखना तूने नेकी की है, एक नेकी ने सारे काले जादू को तोड़ के रख दिया, एक नेकी। सोचे तो सही, जिसके पास कुरान की नेकी है, मदीने वाले के फरमान की नेकी है, और जिसके पास अर्श की वही की नेकी है, उसकी आंखों में तासीर, उसके बोल में तासीर, उसकी जिंदगी में तासीर, और कमाल क्या होगा? सोचे तो सही, वो कमाल ही क्या होगा, वो कमाल ही क्या होगा। कहने लगे जो मेरे पास आता था ना आखिरी 6 सूरतें पढ़ने वाला, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता था, उस पर जादू असर नहीं करता था। ट्रेन का सफर हो रहा है, सुने जरा गौर से, ट्रेन का सफर हो रहा है। एक ट्रेन के सफर में एक साहब बैठे हुए हैं, आम इकोनॉमी में, खिड़कियां खुली हुई, मिट्टी, धूल, रोशनी वगैरह, सर्दी गर्मी आ रही। उसमें एक साहब बैठे हुए थे कि जिनके ऊपर जिन्नात काले थे और उनकी जिंदगी को उन्होंने बीमारियों, तकलीफों, परेशानियों, मुसीबतों में घेरा हुआ था। यह शख्स रोजाना बैठ के पढ़ता था 40 बार सूरत मुजम्मिल, और एक दफा सूरत मुजम्मिल की तासीर याद रखना, जो रोजाना एक दफा सूरत मुजम्मिल रहे पढ़ेगा, दुनिया का आखिरी बेनमाजी है, कभी बेनमाजी नहीं रहेगा, अल्लाह मरने से पहले उसे आला दर्जे की नमाज अता फरमाएंगे, आला दर्जे की। मेरे लफ्ज पे गौर कीजिएगा, जो रोजाना सिर्फ एक दफा सूरतें मुजम्मिल पढ़ेगा, एक बार, दुनिया का आखिरी बेनमाजी है, और बहुत अरसा का, सारी उम्र का बेनमाजी है, अगर वो नहीं पढ़ता उसकी तरफ से कोई दीवाना पढ़ना शुरू हो जाए, सिर्फ एक दफा सूरत मुजम्मिल, और मेरे ख्याल में 3 मिनट में पढ़ी जाती है, ये 3 मिनट में पढ़ी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, वो कहते हैं मैंने कभी नमाज पढ़नी नहीं है, हमारे यहां एक साहब थे, उसको उसका नाम था जनरल गोली, उसको गोली कहते थे। जब ये अफगानिस्तान में तालिबान का था, उन्हें कहा तालिबान बंदूक लेके आ रहे हैं, जबरदस्ती नमाज पढ़वाएंगे। उन्हें कहा तालिबान भी आ जाए तो मैंने नमाज नहीं पढ़नी। उसको ऐसे लोग मजाक करते थे कि तालिबान आ रहे हैं, बंदूक लेके आ रहे हैं, तुझे अब नमाज पढ़नी पड़ेगी। दोनों ने एक दफा पी हुई थी शराब, एक उनमें उर्दू बोलने वाला था, एक दूसरा था, दोनों दोस्त थे। उन्होंने कहा अबे तू बिजली को हाथ लगा के दिखा, जनरल गोली बना फिरे, मैं कैसे ना लगाऊंगा। उसने बिजली का स्विच निकाला और उसने हाथ लगाया, ठो वहां जाके गिरा धमाके से। उसने कहा वाह देख लिया, बिजली ने तुझे उठा के कहां फेंका था, तो शराब में बेचारे दोनों शराब में थे। उन्होंने कहा भाई फिर लगा के दिखा, अब जनरल गोली उठा फिर पता नहीं कैसे उठ गया, फिर रखा और फिर ठा के दीवार से लगा, सर फट गया लहू लुहान। अब दोनों थे तो नशे में। उन्होंने कहा देख लिया तू जनरल गोली वाला फिरता है, और जनरल इतना बुजदिल होता है, एक बंदा दूर से देख लिया उसने जाके पकड़ लिया। उन्होंने कहा दोनों मर जाओगे, दोनों मर जाओगे। उसको उठाया अस्पताल ले गया, 13 टांके लगे, बिजली का झटका उठा के उसने कहां फेंका, और 4 महीने बिस्तर से ना उठ सका, 4 महीने नहीं उठ सका बिस्तर से। बड़े मैं बात कर रहा था सूरत मुजम्मिल की, बात मैं यहां फिर जनरल गोली के और वाकया सुनाऊंगा, फिर वो कहानियां निकल जाएंगे, मैं कहीं और चला जाऊंगा। जय लई गली और नल तोर चली। ओ कहने लगा कि एक बार सूरत मुजम्मिल अगर वो नहीं पढ़ता, बाज लोग ऐसे होते हैं उन्होंने फजर की नमाज की नियत की होती है, फजर कभी नहीं छोड़नी, फजर कभी नहीं छोड़नी, वो अगली नियत भी थोड़ी सी कर ले। बाद में जुमे की नियत की होती है, बाद में ईद की नियत की होती, ईद कभी नहीं छोड़नी। और थोड़ा सा तरक्की करें, जमाना बड़ा एडवांस हो गया, तरक्की बढ़ गई है, अब तरक्की हमें भी करनी चाहिए। अगर कोई एक बंदा भी उसके नियत करके कितनी बार सूरत मुजम्मिल पढ़े, एक बार सूरत मुजम्मिल पढ़ ले, बड़े से बड़ा बेनमाजी बेनमाजी नहीं रह सकता इंशाल्लाह। वकफा बिल्लाह वलीयम वकफा बिल्लाह नसीर। अच्छा आप ट्रेन की बात बता रहा था, एक बंदे में ना काले जादू के असरात थे और जिन्नात शैतानी जिन उस पर काबू थे बेचारे के। इसका वजीफा था कि इसने सूरत मुजम्मिल रोजाना 40 बार पढ़नी थी, इसका वजीफा था। यह बंदा नमाज पढ़ के फजर के बाद, फजर की नमाज पढ़ी ट्रेन में और बैठ के वजीफा पढ़ने बैठ गया। अब उसी बोगी में एक और साहब भी बैठे हुए थे जो कि काले जादू के आमिल थे। अब ये अपनी तस्बीह कह रहा बैठा, बस दिल ही दिल में तस्बीह पढ़ रहा, गिन रहा कि अब एक दफा सूरत मुजम्मिल हो गई, 2 बार हो गई, 4 बार, 6 बार, 10 बार हो गई। जब ये पहुंचा ना 11 बार पे सबसे पहले आग लगी उसको जो काले जादू का आमिल था। वो ऐसे उठ के ना घूमने लगा, ऐसे जोर जोर से कहने लगा इस ट्रेन में कौन है जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है, इस ट्रेन में कौन है, इस बोगी में कौन है, बोगी में ट्रेन नहीं कहा बोगी कही, इस बोगी में कौन है जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है। वो बंदा ने बोलना ही नहीं था, वो पढ़ रहा था। वो कहने लगे कि मैंने 3 बार इतनी बार में इतनी गुफ्तगू में 3 बार और पढ़ ली, 3 बार और पढ़ी ना, तो उसको ऐसी परेशानी हुई, उसने अपना ऐसे गरीबान खोल दिया, सब कुछ खोल दिया। कहने लगा इस ट्रेन में कौन है बोगी में जो सूरत मुजम्मिल पढ़ रहा है, बता दो। उन्हें कोई परवाह ना की, वो पढ़ता गया। उसके बाद उसने अपना चोला फाड़ दिया एकदम गुस्से में, ऐसे गिरिवान से ना कमीज फाड़ दी। लोग परेशान भी, क्या हो गया इसको। एक दो बंदे बोले उन्हें बाबा जी कौन पढ़ रहा है सूरत मुजम्मिल, कोई नहीं पढ़ रहा। उन्हें कहा नहीं। अच्छा सोते ही बंदे उठ गए, अक्सर अक्सरियत सो रही थी फजर के बाद का वक्त, अक्सरियत सो रही, सोते बंदे उठ गए, शोर धमाके, कभी इधर सर मारे, कभी खिड़कियां खोल दी उसने,
کبھی یوں کرے میں کود جاؤں گا, میں مر جاؤں گا, مجھے بتاؤ سورت مزمل کون پڑھ رہا.
اور آخر کار کہنے لگا کہ سورت مزمل پڑھنے والے بند کر دے, میرا جادو, میرے چلے, میری ساری عمر کی محنت تو ضائع کر رہا, میری بچوں کی روٹی مجھ سے نہ چھین.
میرے حضرت فرماتے تھے, ایک بات بتاؤں, فرمایا جو سورت مزمل 40 بار 123 دن پڑھ لے,
کسی کو 121 دن بتاتے تھے اور کسی کو فرماتے تھے 123 دن پڑھ لینا, 21 دن کی کمی کوتاہی پوری ہو جائے گی. پڑھ لے 121 یا 23 دن, جیسے حدیث میں 25 یا 27 کے الفاظ آئے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی کے بارے میں. میں پڑھ لے, فرماتے تھے اللہ اس کی تاثیریں عجیب تک تاثیریں بتاتے تھے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ. ایک تاثیر یہ بھی بتاتے تھے کہ جو بندہ یہ عمل کر لے روزانہ 40 بار سورۃ مزمل اول آخر درود پاک 3, 7, 5 بار, میں اللہ پاک اس کو وہ تاثیر دے دیں گے, ایسے ہاتھ ملائے گا اور جس بندے کے پاس کالا جادو, کالی چیزیں, شیطانی چیزیں اور جناتی چیزیں ہوں گی اسے وہ چھین لے, ایسے ہاتھ ملاتے چھین لے گا. میں آپ کو واقعہ اپنے شیخ کا سنایا سناتا رہتا ہوں, چونا منڈی کشمیری بازار کا, وہ میں حضرت کے ساتھ تھا تو حضرت فرمانے لگے, ایک صاحب تھے وہ دکانوں پہ مانگ رہے تھے اور ان کے ساتھ ڈبے تھے جس میں ہر مل وغیرہ کی نا وہ دھونی یوں دیتے ہیں, دھونی دیتے تھے. حضرت فرمانے لگے اس کو بلا کے لے آؤ. میں نے کہا, میں نے کہا جی میرے بابا جی میرے مرشد بلا رہے ہیں. اچھا, آیا نا جب قریب دیکھا, میں کہہ نہیں نہیں میں نہیں جاتا. میں نے کہا نا بھاجی چلیں بلا رہے ہیں. کہنے لگا نہیں میں نہیں آتا. ارے بابا جی آپ تو جانا پڑے گا, مرشد کا حکم ہے. جوانی تھی, اب تو نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت, پکڑ کے لے گیا. اب بابا جی حضرت فرما رہے ہاتھ ملا, بھی ہاتھ ملا مسافہ کر مسلمان ہے. انہیں نہیں میں نہیں ہاتھ ملاتا. میں نے ہاتھ پکڑ موڑ توڑ کے حضرت میں ہاتھ دے دیا. میں نے ہاتھ ایسے دے, حضرت نے ایسے ہاتھ کر کے کہا چاہو. ہمارے سامنے تو یہ بات بعد میں کھولی, روئے کہ بابا جی معاف کر دو, نہیں کروں گا, دے دو دے دو. وہ دکان کا تھڑا ہوتا ہے اس کے نیچے سڑک پہ بیٹھ گیا. لوگ پریشان, یہ کیا ہوا, ایسے ہاتھ ملا ہے بس. اس ہاتھ ملانے سے وہ تو فارغ ہو گیا, اس کا جو بھی طلسم تھا, جو بھی سارا وہ کالی دنیا کا نظام, کالے جادو اور کالی جنات, شیطانی چیزیں, وہ ساری چھین لی, وہ سب کو چھین لیا, اس کو نہ دیا. کہنے لگے میرے بچے, میں نے حضرت نے فرمایا ظالم جو تجھے پیسے دے رہا تھا ٹھیک, جو نہیں دے رہا تھا تو اس کی دکان باندھ کے جا رہا تھا, ہر کسی کی دکانیں باندھ رہا تھا, دکانیں بند جاتی ہیں, تندور بند جاتے ہیں, تندوروں کے اندر وہ کنکر پڑھ کے دیتے تھے, آگ لکڑیاں جاتی ہیں تندور میں, دھواں بن جاتا ہے, جلتی نہیں. تندور تندور دکانیں, ہر چیز, رشتے, شادیاں, تو دکانیں باندھ رہا تھا تو کیا کر رہا تھا. انہوں نے کہا میں سب کھول دیتا ہوں. انہوں نے کہا آپ سب کھل گئی ہیں, جب تیرا پلس بھی ٹوٹ گیا تو سب کھل گئی, تو اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہا تھا. آ کر چلا گیا. بعد میں ایک اور موقع پہ شیخ نے فرمایا یہ ساری تاثیر سورۃ مزمل کی ہے, یہ ساری طاقت سورۃ مزمل کی ہے, جو 121 یا 23 دن 40 بار سورۃ مزمل پڑھے, ہر دفعہ بسم اللہ اول آخر درود شریف, اللہ پاک اس کو جو ہے یہ چیز عطا فرمائیں گے, یہ تاثیر عطا فرمائیں گے کہ وہ کالے جنات کے لیے وہ ایسے ہوگا جیسے جیسے نا کوا نہ جاتا ہو کہیں تو اس کو شیشہ دکھائیں, یا ایسی تیر کمان یا گلیل. رہ گیا وہاں ایک جو ہے کراچی میں ایک جگہ, وہاں ایک بندہ نا گلیل لے کے کھڑا ہوا تھا, لال قلعہ ہوٹل ہے وہاں وزٹ کیا, وہ حلال کی چیزیں کرتے ہیں, एक बंदा सिर्फ गुलेल लेकर, मैं तुम क्यों खड़े हो? कह रहे सिर्फ मेरी ड्यूटी यही है, मैं ऐसे देखता रहूं और इसी चीज की तनख्वाह मिलती है, और मैं जो है वो आए कोई कौवा वगैरह तो उसको मैं डराऊं। हमारे एक बब्बर शेर है, वो शिकारी है, वो कहने लगा कि हम जो है जब शिकार खेलने जाते हैं ना, तो कौवे जाके दूसरे परिंदों को इतला करते हैं, हमें देख लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, और कहा जो परिंदा नहीं उठता उसे ठूंगे मारते हैं, उसे चूचे मारते हैं, उठ यहां से जालिमान आ गए। कहने लगे फिर हम क्या करते हैं, हम पहले एक कौवा मार देते हैं, उसको मारते ही सारे कौवे उसके रोने पे इकट्ठे हो जाते हैं, चल तुम्हें अपनी पड़े हमारी छोड़। कहने लगा कौवा मार दिया एक पहले बंदूक से, सारे कौवे उसी को रोने के लिए जमा हो गए बेचारे, जैसे होते हैं जमा, और कहा कि फिर हम आगे चल पड़े। आगे गए तो कुछ अरसे के बाद फिर देखा कि एक कौवे उठे, उन्होंने कहा शिकारी आ गए, और परिंदों को मुतवज्जे कर रहे हैं, फिक्रमंद कह रहे हैं, ओ पैणा ओ भैया चल, ओ भाई क्या कर रहा है, ओ देख यहां से खाता है यहां से खाता है, वो जालिम शिकारी आ गया, मोटा शिकारी, वो देख चल चल चल। उन्होंने कहा आगे फिर कोई करता है तो फिर एक कौवा मार के उसको कर देते, हमें तो वो ना हमारे पास बंदूकें हैं ना हमारे पास असले हैं, कुछ भी नहीं है। पर एक बात याद रखिएगा, हमारे पास मदीने वाले का फरमान है, हमारे पास कुरान है, हमारे पास कुरान का नाम है, हमारे पास कुरान के नक्शे हैं। उस वक्त से डरें जब सुबह उठेंगे कुरान के हर्फ होंगे, कुरान के वर्क होंगे, हर्फ नहीं होंगे। हाँ, अलामत कयामत में ये अलामत है कि अल्लाह कुरान के हर्फ उठा लेगा, हर बंदा कहेगा आज कुरान हमसे चला गया, और सीनों से अल्लाह निकाल लेगा, सीनों से। हाफिज कारी कुरान भूल जाएंगे और कुरान के वर्क के खाली पड़े होंगे, हर्फ अर्शों पे अल्लाह ले लेगा। वो अलामत कयामत में वो वक्त आने वाला है, जो अलामत कयामत जिस अंदाज से पूरी हो रही है, पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। अच्छा, ये तो इसके साथ हुआ, जो बैठा था ना जिसके ऊपर काला जादू जिन्नाती शैतानी असर था, वो बेचारा उठा और घूमना शुरू हो गया, परेशान पागलों की तरह, इधर जाए उधर जाए, लोगों ने कहा पकड़ लो कहीं ये बाहर ना छलांग लगा दे। और ये बंदा सारा मंजर बैठा देख रहा, सारा मंजर बैठा देख रहा, और कह रहा कि मैंने अपनी सूरत मुजम्मिल का किसी को ऐलान नहीं किया, पर सूरत मुजम्मिल ने अपनी तासीर का ऐलान कर दिया, सूरत मुजम्मिल ने अपनी तासीर का ऐलान कर दिया, और सूरत मुजम्मिल अपनी तासीर के साथ बता रही है कि मेरे ये फायदे हैं, मेरे ये नफे हैं, मेरा ये रिजल्ट है, और ये मेरी कहानी है। जिन्ना तो हमारे दुश्मन है भाई, और बताऊं इगवा के केस मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं, इगवा करके ले जाते हैं खवातीन। एक अंसारी सहाबी, एक रिवायत है, किताब अन्निहाया, ये किताब अन्निहाया है, उसकी रिवायत में बयान कर रहा हूं। एक अंसारी सहाबी इशा की नमाज के लिए घर से निकले, जिन्नात ने उनको अगवा कर लिया, कई साल तक गैब रखा, फिर वो मदीना मुनवरा तशरीफ लाए तो उस वक्त दौर था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का। उन्होंने तफसील पूछी तो उन्होंने बताया कि मुझे जिन्नात पकड़ के ले गए और एक जमाने तक उनके पास रहा, इसके पास मुसलमान जिन्नात ने उनके साथ जिहाद किया और मैं उनसे बहुत से अफराद के साथ मुझे भी कैद कर लिया, फिर मुसलमान जिन्नात ने मुझे अख्तियार दिया, चाहे मैं उनके पास रहूं या अपने अहल वयाल के साथ चला जाऊं, लिहाजा मैं अपने घर मदीना मुनव्वरा आ गया। अब एक और रिवायत सुने, वो बालों वाली, के ये फैसलाबाद का वाकया है, फैसलाबाद का। हमारे घर के सामने पानी का एक तालाब था जिससे औरतें पानी भरने आती थी। एक दिन वहां किसी औरत को एक लड़की ने आवाज दी, भाग भरी मैं तुमसे मिलने आई हूं। उस माई का नाम था भाग भरी। औरत को औरत की आवाज आई, भाग भरी मैं तुमसे मिलने आई हूं। हालांकि आवाज देने वाली लड़की नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त उस औरत के सर के बाल एक दूसरे में सख्ती से पैवस्त हो गए, जुड़ गए और उस बिचारी की हालत गैर हो गई। उसके घर वाले एक दुर्वेश के पास ले गए, उन्होंने दम किया, तब जाके वो तकलीफ खत्म हो गई। हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है जमाले औलिया में। लिखा है एक शख्स हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। कहने लगा, हजूर, जिन्नात मेरी बेटी उठाकर ले गए हैं, उसकी वापसी का कोई बंदोबस्त करें। आपने फरमाया, अपने इर्द गिर्द दायरा खींच लो और ये अल्फाज पढ़ो। उसने ऐसा किया तो उसके सामने जिन्नात का बादशाह आ गया और पूछने लगा कि तेरी क्या हाजत है। उसने अपना मसला बताया कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया। शाह जिन्नात ने फौरन उसकी बेटी को बाजियाब कराया और अगवा करने वाले जिन का सर कलम कर दिया। मेरे पास एक केस आया, ये जहां नया पोर्ट बन रहा है बलूचिस्तान में, गवादर का। गवादर के वहां बलोच थे, अनपढ़ सीधे साधे बंदे, शरीफ लोग। उनकी खातून वहां के रहने वाले थे, बड़े अल्लाह वाले थे। उनकी खातून ले गए, कई माह के बाद उसकी लाश आके छोड़ गए। ये नहीं है कि कोई बंदा बाहर घर में छोड़ गया, कमरे के अंदर आके उसकी मैयत को रख गए। एगवा था, खवातीन का एगवा। मेरे पास उस दिन एक साहब आए अपने बेटे को लेके, कहने लगे इसको सुलाते घर हैं, फिर पता नहीं हम ताले लगा के रखते हैं। पहले समझते थे इसको शायद नींद में चलने की, बाज मरीज होते हैं जिसमें नींद में चलने की आदत होती है, नींद में ऐसे चलते जाते हैं। फिर हमने ताले लगा के रखे, ताले के बाद भी ये नहीं होता था, और अक्सर जब भी मिलता है कब्रिस्तान में मिलता है। और कब्रिस्तान में कहां मिलता है, मैंने पूछा कहां मिलता है, कहां कोई एक कब्र है अक्सर वहां मिलता है। मैंने कहा जाके पता करो वो कब्र फलाक महकमे वाले की तो नहीं है। हमें पता नहीं, मैंने कहा पता करना, आइंदा आना तो मुझे बताना। उस कब्र में जाके गोरकन को पता करना, उनको कब्रों का पता होता है। और देहात का कब्रिस्तान है तो वहां हर बंदे को एक दूसरी कब्र का खबर होती है, अंदाजा। मैंने कहा फला महकमे वाले की कब्र तो नहीं है। एक मैंने गुमान किया, ख्याल किया। तो वापस जब अगली मुलाकात पे आए, तो अगली मुलाकात पे आए, उन्हें कहा जी वाकई ये उसी महकमे वाले की कब्र है। मैंने कहा उसको सख्त अजाब हो रहा है, और ये काले जिन्नात जिन कब्रों को अजाब होता है, खबीस जिन्नात उसके इर्द गिर्द ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां आग होती है और आग इनकी पसंदीदा चीज है। और नेक जिन्नात, ये मैं राज बता रहा हूं, जो नेक जिन्नात हैं वो उन कब्रों के इर्द गिर्द ज्यादा होते हैं जहां रहमत, जहां बरकत, जहां नूर, जहां अल्लाह की सकीना और तजल्लियात नाजल होती हैं, क्योंकि उनकी गिजा रहमत, बरकत और नूर होता है। उनकी गिजा रहमत, बरकत और नूर होता है। और उसके जिस्म को उठाते हैं और उसी कब्र वाले के पास जाके वहीं कब्र पे पड़ा होता है। एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, आखिर वो भी सोचने लगे कि भाई कभी पूरे कब्रिस्तान में कब्र ही यही है, इसी कब्र में जाके फेंकते हैं। उन्हें कहा कब्र ही यही है, और उनकी वो पसंदीदा कब्र है, पसंदीदा कब्र है। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैं वालिद की कब्र पे जाता हूं तो बैठ नहीं पाता, वालदा की कब्र पे बैठता हूं। ये मैं अगली बात में से बात निकली थी, पर एक और राज ही बता दूं। वालिद की कब्र में जाता हूं तो बैठ नहीं सकता, वालदा की कब्र में जाता हूं तो बड़े सुकून से बैठता हूं। मैंने कहा वालिद के लिए गैबाना कलमा पढ़, 70,000 दफा सदकात खैरात कर, लगता है तेरे वालिद की जिंदगी में कुछ ऐसी थी कि अल्लाह के हाँ को बख्शिश का निजाम नहीं। मुझे खुद ही कहने लगा मेरे वालिद की मौत बहुत बुरी हुई थी। मैंने कहा कि कुछ बातों में से कुछ हो सकता है, तेरे वालिद में फला ऐब था, फला कारोबार था, फला पेशा था, उसने कहा ये दो चीजें थी, ये नहीं थी, उसकी वजह से वो हुआ है। और वो क्योंकि कलाम इलाही पढ़ता था, उसको वो शैतानी चीजें उस कब्र पे खुद बैठने ही नहीं देती थी, दूर कर देती थी। और बाद कुछ अरसा फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा या लतीफों का 1,25,000 कर, कलमे का 70,000 कर, और उसके लिए दोस्त आपस में मिलके सूरत मुल्क बहुत ज्यादा पढ़ो, बाज को मैं 40,000 पढ़वाता हूँ, बाज को 400 पढ़वाता हूँ, बाज को 40 दफा सूरत मुल्क। और दूसरा मैंने कहा कि उसके उनके लिए कसरत से आयतल कुर्सी पढ़, आयतल कुर्सी। ये जब उसने कुछ अरसा मुसलसल पढ़ा और अपने मुखलिसीन से मिलके, किराए के बंदे नहीं, मुखलिसीन से मिलके, घर वालों ने मुखलिसीन पढ़ा, अब कहने लगा कि अब मुझे वालिद की कब्र पे बैठे हुए सुकून मिलता है, और वालिद की कब्र पे बैठ के मुझे एक एहसास होता है कि रब ने मेरे वालिद की बख्शिश कर दी। एक दुर्वेश, एक दुर्वेश, उनके पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत मैं एक घड़ा लाया हूं और घड़े का पानी गर्म रहता है, ठंडा नहीं होता, क्यों? आप साहब कष्ट थे, फरमान लगे महसूस ऐसे होता है कि यह घड़ा किसी बंदे के जिस्म की मिट्टी है जिसको अजाब हो रहा है। दफन किया, कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान ही खत्म हो गया सदियों से। आपके लाहौर की सारी अनारकली कब्रिस्तान है। मेरे पास वाकियात ही वाकियात हैं, क्योंकि अनारकली में अब तीन तीन तहखाने खोदे उन्होंने, एक तहखाना दूसरा दूसरा, तो नीचे से हड्डियां खोपड़ियां बेबहा, क्योंकि अंदरून शहर का सारा मैयत यहीं आता था। शहर तो लाहौर शहर में अंदरून शहर था। वो जो उस दिन एक साथ कहने लगे कि हम फलां शहर में रहते थे तो भाटी में, तो मजंग गांव और इचरा गांव, वहां के टांगे चलते थे, यहां के टांगे चलते थे, जो पिंड मजंग के बकायदा आवाजें लगाते थे। ये जगह गांव था, यहां जमीनें थी, शहर तो वही था, फैलते फैलते फिर कहां चला गया। तो कहने लगे कि मैं जो है क्या बात कर रहा था, हाँ लगे कि लगता है कि ऐसे बंदे की कब्र की मिट्टी है जिसको असर हो रहा है। अच्छा और बैठ के दुआ करते हैं, फिर उसी महफिल में बैठ के दुआ की, अल्लाह से मगफरत मांगी और इस्तगफार करते रहे, मगफरत मांगते रहे। फिर कहने लगे इंशाल्लाह अल्लाह ने बख्शिश कर दी। और कुछ दिनों के बाद वो साहब फिर मिले, आके कहने लगे कि हजरत घड़े का पानी ठंडा होना शुरू हो गया, पहले घड़े का पानी गर्म होता था। क्या बातें बताऊं आपको, दास्तान ही लंबी है। हमारी जिंदगी तख हो गई, परेशान हो गई। एक छोटा सा घर होता था, फैमिली उनके फैमिलियां रहते, बूढ़े होके मर जाते थे, और कई की घराने उस छोटे से घराने में रहते थे। आज दिल तंग हो गए, नफरतें बढ़ गईं, उसकी वजह कुरान छोड़ने से, मदीने वाले का फरमान छोड़ने से। कुरान की दुनिया हमसे चली गई, हमारी अपनी दुनिया तंग हो गई। कनालों के बड़े घर हैं, सुकून नहीं है, एकड़ों में घर हैं, सुकून नहीं है, और जिंदगी में चैन नहीं। रात में बैठा एक फोन सुन रहा था, ओ घराना फोन ही खत्म नहीं कर रहा था, उनके गम ही गम, गम ही गम, गम ही गम। और मैं उनके घर गया हूं, दुनिया का आखिरी महंगा पत्थर लगा हुआ है, और कोई पत्थर पाकिस्तान का नहीं है, कोई कर्टन कोई फर्नीचर यहां का नहीं है। इतना घर अजीब और गरीब है जैसे घर नहीं है, कोई कोहकाफ का तिलिस्माती दुनिया है, अजीब। हाँ लेकिन सुकून और चैन, जिंदगी नाम नहीं है उस घर में, ये कुरान छोड़ने से है। ये हमने छोड़ दिया। हम अपने असल असल दुश्मन को पहचाने, वो काले शैतान हैं, वो काले जिन्नात हैं, जिनको हम शैतान कहें या जिन, एक ही चीज है। अपने दुश्मन को पहचाने, अपने दुश्मन को तो भूल गए, उसको तो हमने याद ही ना रखा। और वो गालियों से नहीं जाएगा, कभी अंधेरा डंडे से गया, रोशनी लिया अंधेरा चला जाएगा। वो गालियों से नहीं जाएगा, वो नारों से नहीं जाएगा, हमारे मैम छोटा सा मस्जिद में था, एक बाबा जी थे जोर से सुभान अल्लाह कहते थे, सबसे ज्यादा सुभान अल्लाह जोर से ऊंची कहते थे वो, और सिर्फ जुमा पढ़ते थे। ये शोर शराबे से नहीं बात बनेगी, ऐसे नारा मारो जी में रावी छल पे जाती है, जोर से और नारा मारे। अरे नारा मारने की जगह तो जिहाद की दुनिया है, वो बॉर्डर है जहां कुफ्र इस्लाम की जंग होती है, ये नारा मारने की जगह कहां है? कुछ नहीं होगा इससे जब तक जिंदगी में वो चीज नहीं आएगी जो कुरान का एक बॉल भी जिंदगी में आएगा बरकत हो जाएगी। कहने लगे कि बाबा जी आए, बाबा जी हम एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए अपने अपने उसको जो है वो हमारे को मेहमान आ रहे थे, उनको गए ना तो वहां कोई नॉन मुस्लिम और खड़े थे, उनके गुरु आ रहे थे, उनके गुरु। मेरी बात पे तवज्जो है, सर ऊंचा करके देखें जरा। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? खैरियत से? ठीक। कहने लगे वो एक गुरु थे उनके आए थे, तो उन्होंने गुरु की तारीफ की, हमारे गुरु में ये खूबी ये खूबी ये खूबी ये खूबी ये खूबी। गुरु की बातें सुनते 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 ना हमने कभी हम गुरु से मिले, उनके गुरु आए एयरपोर्ट से, उनके पीर थे बड़े थे सारे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये मुसलमान हैं, कोई आपसे जरा बात करना चाहेंगे। उन्होंने हमसे बात की और हमसे बहुत सी बातें हमें सच्ची बताई, और एक बात कहने लगे कि आपके घर में किसी कपड़े का एक टुकड़ा है, उसकी वजह से बड़े अजाबों से बचे हुए हो, बड़ी बलाओं से बचे हुए हो, बड़ी मुसीबतों से बचे हुए हो। सारी बातें बाबा की ठीक है, ये पता नहीं क्या बात है। घर में आया मैंने बीवी को बताया, बीवी से कहा ऐसे ऐसी बात है, तो बीवी मुस्कुराई, कहते बाबा ने वो बात भी ठीक कही है। कहीं से छोटा सा काबे का गिलास हमारे घर में आया था, मैंने वो रखा था, छोटा सा काबे का गिलास मेरे घर में आया था, मैंने वो रखा था, उसकी बरकत है, उसकी बरकत है। ये तबरकात वाला जो कमरा है ना नीचे, इसकी तो तजल्लियात है, जहां मेरे आका के रोजे अथर का वो गिलाफ पड़ा है, अल्लाह की कसम रब्बे काबा की कसम, अरबों दरूद पाक अरबों दरूद सलाम इंसानों का भी और जिन्नात का भी और फरिश्तों का, हुजूर के रोजे पे, हुजूर के मेरे आका के रोजे पे जो आज फरिश्ते आए हैं, क्यामत तक उनकी बारी आएगी ही नहीं। तो सोचो जिन्हें पता है हम पहली और आखिरी दफा सलात व सलाम पढ़ रहे हैं, दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, जिनको पता है पहली और आखिरी बार, वो किस वजह किस जज्बे किस कैफियत से। और आपके पास वो गिलाफ मुबारक है, अभी यह गिलाफ मुबारक मुझे हदिया मिला है, जो खुद काबा के अंदर का है, काबा के बाहर का गिलाफ स्याह होता है, काबा के अंदर का गिलाफ सब्ज है, उसकी निशानी यह है उस पर सारे अल्लाह के नाम लिखे होंगे, और हुजूर के रोजे का गिलाफ सब्ज है, ऊपर पट्टी ये सुर्ख है, उसकी निशानी यह है कि हुजूर की शान में जो आयतें वो लिखी होंगी और हुजूर के सिफाती नाम लिखे होंगे, नाम लिखे होंगे। क्या तजल्लियात होंगी, क्या अनवारात होंगे, और क्या बरकात होंगे, क्या उस तस्बीह खाने में क्या इसका नूर नहीं आ रहा? सोचे तो सही, इतने बड़े बड़े गिलाफे काबा हैं, इतने बड़े बड़े मेरे रौज़ा अत्हर के गिलाफ मुबारक हैं, और क्या क्या हस्तियों की बाबरकत चीजें हैं। तो उन्होंने कहा एक छोटा सा किसी कपड़े का टुकड़ा है, आपको वो बहुत बचाए जा रहा है। उसने आगे बीवी को कहा तो कहने लगी वो भी बाबे ने सच कहा है, वो गिलाफे काबा है, और गिलाफे काबा के साथ निस्बत कुरान की है, सजदों की है, इबादत की है, और हर बंदा वहां कुरान पढ़ रहा, सजदे इबादत तस्बीहात, और मेरे आका के रोजे अतर के गिलाफ की निस्बत दरूद सलाम की है, सलात सलाम की है। मेरे दोस्तों ये कपड़ा है, ये निस्बतों में गिलाफ काबा बन जाता है, लेकिन उस वक्त बनता है जब इसके साथ कुरान की निस्बत होती है। ये कपड़ा है रेशम का, ये निस्बत बनती है मेरे आका के रोजे अत्थर के अंदर का गिलाफ का, तो उस वक्त होता है जब इसके साथ सलात व सलाम की निस्बत होती है, ये उस वक्त होता है। अपनी जिंदगी में हमने कुरान को छोड़ा है, काले जिन्नात और शैतानी चीजें हमारे ऊपर ऐसे गालिब हो गए हैं, और हमारा रिस्क कारोबार इज्जत बरकत और हमारे सुकून और हमारी जिंदगी का चैन सब लुट गया है और हमारा कख नहीं बचा, हमारी जिंदगी का कुछ नहीं बचा। आइंदा जुमेरात इन काले जिन्नात और काली चीजों के और मैं इनका शाफात आपके सामने करूंगा। मैं चाहता हूं कि इसकी कुछ सीरीज चले, अगर आप चाहें तो, चाहते हैं, जिंदगी में गम दूर, परेशानियां दूर, मसाइल हल, मुश्किलात दूर, नाकामियां खत्म, अगर चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं चाहता हूं कि ये चीजें जो जैसे मैंने आपकी खिदमत में मिसवाक की उस दिन बात की है, हड्डियों की बात की है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हम समझते तो हैं ये ठीक है, लेकिन उनकी इतनी अहमियत का पता नहीं होता कि अच्छा इतना अहम है, उनकी ताकत और तासीर इतनी ज्यादा है, इनका कमाल और इनकी बरकत इतनी ज्यादा है। तो इंशाल्लाह ये चीजें मैं आपकी खिदमत में फिर पेश करूंगा, ये जल्दी आया करें ताकि इन नेमतों से महरूम ना हो जाया करें, जल्दी आया करें ताकि इन नेमतों से दूर ना हुआ करें, जल्द से जल्द आया करें। मुझे एहसास है दिन छोटे हैं, आदमी को फारिग होने में अपने काम कारोबार जॉब जिंदगी की मशगूलियत से वक्त लगता है, लेकिन जुमेरात के दिन कुछ फैसले कर लिया करें और अल्लाह से मनवा लिया करें। हमारे एक दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, वो कहते हैं मैंने अल्लाह से मनवा लिए है कि अल्लाह बस मैं बंद रखूंगा फिर उसका तो मुझे, और अल्लाह पाक कहते हैं उसका मुझे दे देता है, बड़ा करीम है, जो अल्लाह के लिए छोड़ते अल्लाह कर देता है। मनवा लिया करें अल्लाह से, मनवा लिया करें। तो क्या ख्याल है ये जिन्नात की जो शरारतें हमारी जिंदगी में हैं और जिन्नात हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है उनका जिंदगी में, क्या इसको बयान किया जाए आंदा ना किया जाए? हैं? जैसे मैंने आज बयान किया, कौन सा? हाँ, राडो घड़ी वाला, या करीम, देखने वाले कयामत की नजर से देखते हैं। अब वो मुझे कहे आपने देखा तो नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊं, किसी को उठाते हुए देखा हो आपने? जी मैंने नहीं देखा, मैं गया मस्जिद में, मस्जिद में गया और मस्जिद में जाके दो नफिल पढ़ी मैंने कहा मौला, और मैंने या हफीजों की एक तस्वीर पढ़ी, जो चीज गुम हो जाए अगर या हफीजों की एक तस्वीर पढ़ ले अल्लाह पाक उसको लौटा भी देते हैं और जहां है उसकी हिफाजत करवाते हैं। अच्छा, मैंने या हफीजों की एक तस्वीर पढ़ी, एक तस्वीर पढ़ के ना फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या जामियो या मुईदो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या जामियो या मुईदो, मीम आइन ये और दा या वही दो, ये मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उस वक्त असल में पढ़ा भी जा रहा था, बनी हुई थी ना ऊपर कि उसने वो घड़ी रखी, वो कमरों में ना पहले घर में अंगीठियां बनी होती थी आग जलाने, कमरा गर्म करने के लिए, उसके आगे शेड होता था, वहां उसने घड़ी रखी, वो पता नहीं कहां गई। अच्छा, बाद में अल्लाह ने जब कर्म किया पता चला कि वो उनके बेटे ने उठाई थी, बेटे ने उठाई। अच्छा, मैं पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, मैंने कहा बोला जब तक घड़ी मुझे मिलने की इतला नहीं मिलती मैं नहीं हटूंगा, दे घड़ी दे घड़ी, बोला वरना मैं जिंदगी भर इस घर में नहीं आ सकूंगा, कहेगा तारिक चोर है, बोला मैं नहीं आ सकूंगा, तो इज्जतों की भरमू की लाज रखने वाला है, कर कर दे कर दे कर दे। बस पढ़ते 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 जैसे को पता नहीं विजदान में आ जाता और पागल हो जाता और दीवाना हो जाता। इन्ना लिल्लाहि बिस्मिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन या जामियो या मुईदो। एक माई मुझसे कहने लगी, शोहर भाग गया और दूसरे मुल्क में चला गया, कहते मैं तुझे बुलाऊंगा, शादी को आज पौने 7 साल हो गए हैं, शादी के कोई 2.5 हफ्ते रहा है उसके बाद वापस ही नहीं आया। अच्छा, मैंने कहा राडो घड़ी आती है तो तेरे तेरा शौहर भी लट्टू की तरह आएगा। फिर उन्होंने आपने ये राडो घड़ी वाला वाक्य सुना। मैंने कहा एक दफा ऐसे मैं एक सफर में था, एक जिम्मेदार का घर था, तो उसने कहा राडो घड़ी, फिर बार बार मुझसे पूछे। अब सोच नहीं सकते हो मंदिर में कहां से लाऊं। अल्फाज के तर्जमे होते हैं, कैफियात के तर्जमे नहीं होते। तो खैर मैंने वो उसे कहा, मैंने कहा ये पढ़ पर पढ़ ऐसे राडो घड़ी वाले विजदान के साथ, उस दर्द के साथ, उस जज्बे के साथ, उस कैफियत के साथ, फिर कितना पढ़ू। मैंने कहा जब घड़ी मिल जाए पर छोड़ देना, दो नफिल पढ़ के रोज पढ़ और बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अल्लाह मुझे शोहर दे, मेरी जवानी ऐसी गुजर जाएगी, जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी। एक बच्ची है बस, उसने आज तक बाप को नहीं देखा। दे यकीन जानिए कोई दो हफ्ते, ढाई हफ्ते, तीन हफ्ते, ये महीना पता नहीं, कमोबेश अंदाजा बता रहा हूं, नहीं गुजरा होगा। वहां से उन्होंने नौकरी से निकाला, फिर और नौकरी में गया, उन्होंने नौकरी से निकाला, फिर केस बस बनते बनते एहतियातन जेल में जाते जाते बचा, और बाकी अब घर था, घर में आया और आके कहने लगा कि बस मैंने अब यहीं रहना है। उन्हें कहा सुभान अल्लाह, उन्हें 7 साल हो गए बेचारी को। मैं तो कूंज मांगो कुरलावा, मैं तो कूंज मांगो। वैसा था कि बीवी को तकलीफ हो गई ना, तो डॉक्टर के पास ले गया, उसने मुंह में थर्मामीटर रखा। अब मुंह में थर्मामीटर लेके मैं चुप करके बैठी हुई है, थोड़ी देर के बाद कहता है डॉक्टर साहब ये जो मुंह में चीज रखी है कितने की मिलती है। बड़ी देर से समझ आई आपको। वो मुंह में थर्मामीटर था ना, मैं मुंह में चुप करके बैठी हुई है, चुप करके देखता रहा देखता रहा, उसकी सारी तकलीफें भूल गई। कहने कि सर ये चीज कितने की मिलती है। अच्छा जी, शोर आ गया और कहने लगा आप ये मेरे पास ले आई माई। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा राडो आपने पहनी हुई है? उसने समझा कि सऊदी अरब वाला आते हैं ना लाल रुमाल और राडो पहनते हैं। उन्हें कहा जी नहीं राडो पहन। मैंने ठीक चलो बस अब यहां रहना भाई, आपको जरूरत है बच्ची को। ये है राडो घड़ी वाला वाक्या। चलो एक वजीफा तो आपको मिल गया, हालांकि ये वजीफा पहले मैंने बताया हुआ है, बताया है गुमशुदा चीज के लिए, लेकिन इस वाक्य के साथ कि जब राडो घड़ी मेरे गले पड़ गई तो मैंने क्या किया। और शोहर भी मिल जाता है और रूठी हुई बीवी भी मिल जाती है और गुमशुदा चीज भी मिल जाती है और चोरीशुदा माल भी मिल जाता है। लेकिन पढ़ो इसी तरह विजदान से, कुछ अर्सा पढ़ते रहे हो जाता है, अलग कर देता है। तो क्या ख्याल है ये सीरीज चलती रहे, ये जो बात मैंने आपसे की है चलती रहे, या देखें ये एक ऐलान है, लोग चिंगम खा के वहीं फेंक देते हैं। तस्बीह खाने पर कितनी बेकरामी है, और वो दीवारों से, चटाइयों से, दरियों से चिपक जाती है, बड़ी खतरनाक बात है। सबसे पहले तो ये चिंगम खाते क्यों है यहां? आज के बाद चिंगम खाने पे पाबंदी है। भाई बड़ी अलग वालों को सोचो, यहां चिंगम क्यों खाएं? अगर जिसको नींद आती है उसके साथ सुई लेके बंदा बिठा दो, और मेरी तरफ से ये हुक्म है, ये हुक्म है। ये मेरे साथ था, हम गए अटक में, याद है? कहने लगे जी मैंने दुआए सैफी के जिन्नात को ना कैद कर दिया। अच्छा एक मेरे साथ था एक बंदा, वो उसने ना ऐसे देखा, ऐसे शक में, जैसे ना कहता है ये जिन्नात कैद होते हैं। मैंने कहा वो जिन्नात कैद से निकाल के इसके ऊपर छोड़ दे, मुझे देख। मैंने कहा मेरा चेहरा नहीं देख रहा तुम, मुझे हुक्म दे रहा हूं जिन्नात कैद से निकाल के इसके। मैंने कहा ठीक है। ओहो हो, यार की जो तबीयत ठीक हुई, याद है? ओहो हो, नाम नहीं लेता दरवेश का, जो उसकी तबीयत ठीक हुई अल्लाह के वास्ते वापस करा दो। मैंने कहा भाई मैं ना जिन ताबे करता हूं ना छोड़ता हूं, वो वही आमिल था, वही था। खैर उससे फिर कहा उस बेचारे ने, तो आज के बाद चिंगम नहीं होगी। और एक बंदा मुस्तकिल सुई लेके बैठेगा, मेरी तरफ से हुक्म है, अगर हुक्म की अदूली की नाफरमानी होगी गुनाहगार होंगे, और बकायदा सुई मारेगा जोर से, सिर्फ ये एक बंदे के लिए ड्यूटी है। मेरा चेहरा देखकर मैं हुक्म दे रहा हूं, ये सिर्फ एक बंदे के लिए ड्यूटी है और किसी के लिए नहीं है। जो ताजदार होते हैं, जिनको किसी चीज का मनसब मिला हुआ होता है, फिर अपने मनसब को पहचाने, ताजों को गलियों में जूतियों में न रोलें, मनसब जो जो दे सकता है वो ले भी सकता है, ये भी जहन नशीन रहे। सूरत इखलास का आज अमल भी होगा, आपको याद होगा कितनी जुमेरात है हमारी, सातवीं जुमेरात है। सात रख लें या ग्यारह रख लें, ग्यारह कर लें इंशाल्लाह। आज निकाह भी होगा इंशाल्लाह, कोशिश करें निकाहों को सादा करें। अब कुछ ऐलानात हैं जिसमें आपकी तवज्जो बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह हमारा जो दम होगा वो 23 दिसंबर को आइंदा जुमेरात, आइंदा एतवार बनती है। ये जो एतवार एक ये है, इस एक उससे अगली है इंशाल्लाह। उसमें इस्मे आजम का दम होगा, हल्का कशफुल महजूब होगा, मुराकबा होगा और खिदमत वालों का मुजाकरा होगा। दर्स के बाद लंगर का इंतजाम छत पे होता है, फौरन तशरीफ ले जाया करें। बाजों का लंगर समेट दिया जाता है तो उससे जो है मखलूक खुदा को तकलीफ पहुंचती है। आइंदा गर्मियों में हब्स खत्म करने के लिए अभी तक शफकत अर्ज कर रहा हूं, इसका कोई हल सोचें, कि हल सोचें कैसे होगा। और हमें तस्बीह खाने में खिदमत के लिए मुख्तलिफ शोबों के हजरात 2 घंटे जो हैं वो हमें वक्त दिया करें, 4 घंटे आधा दिन। उस अगर वक्त लेना है तो सिर्फ एक मोबाइल है, जो टेलीनार का मोबाइल है, जो हमारे अबकरी रिसाले के सफा नंबर 40 पे हर दफा लिखा हुआ होता है, उसमें मैसेज करें, कॉल ना करें बस, और अपनी खिदमत दें, नाम लिखवाएं। इस तरह आईटी के शोबे में भी, आईटी के शोबे में, और इसकी खिदमत हमें दें। और दूसरा एक अहम ऐलान है कि तस्बीह खाने की खिदमत के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जो हजरात मुखलिसीन तजर्बाकार हों और वो एक खिदमत करना चाहते हैं, ये सादत है बहुत बड़ी। एक ही दफा सॉफ्टवेयर बनेगी, पता नहीं अल्लाह उसकी नस्लों को शादोबाद कर देगा। और जो बनाने वाले हैं उसमें उसी टेलीनार के नंबर पे मैसेज करें। और दूसरी दरखास्त की थी कि हजवेरी महल में वाबड़ा की तारों का मसला था, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हजवेरी महल की दीवार आ रही है। और मैंने अर्ज किया था कि वहां जाएं, इबादत करें, तस्बीहात करें, ना मुसल्ला मांगे, ना तस्बीहां मांगे, ना खाना मांगे, ना अभी वो माहौल नहीं है। इबादत तस्बीहात आमाल करके वापस आ जाए। और हजवेरी महल को जो है उसका पता किस पे है, फेसबुक पे है, हजवेरी महल डालेंगे वो आपको सारा एड्रेस उसी वक्त बता देगा और आपको वहीं लेता हुआ वहीं पहुंच जाएगा। तो ये आप उस पे आमाल भी, तवज्जो भी। और वाबड़ा का काम मैंने अर्ज किया था, कुछ अब आपने नाम दिया, यूट्यूब पे भी है हजवेरी महल का पता। तो वाबड़ा के काम के लिए अर्ज किया था, क्योंकि बिजली का शोबा है, इसलिए अर्ज किया था कि वहां तारों से एक बंदा मर गया, कुछ जानवर मर गए, तारें बहुत बोसीदा हो गई हैं। अब हमारा चूंकि वहां निजाम शिफ्ट होगा तो उसके लिए अर्ज किया था कि वो जरा कुछ हजरात तवज्जो फरमाए, और वो भी टेलीनार वाले हमारे नंबर पे मैसेज करें। और दर्श लिखने वाले जो हजरात हैं, जो पूरी दुनिया में हमारा दर्श लिखना चाहते हैं, दर्श उर्दू में लिखें इसको, वो हजरात भी उसी नंबर पर मैसेज करें, क्योंकि कुछ हजरात पहले दर्श लिखते थे, फिर वो हजरात कुछ लिखना छोड़ गए, शायद उनकी कोई मजबूरी, परेशानी या कोताही। तो दर्श लिखने वाले हजरात खुशकिस्मत होंगे जो दर्श लिखें। एक दर्श लिखने वाला ऐलान किया, दूसरा हजवेरी महल में वाबड़ा की तारों का मसला, इस पे ऐलान किया, तीसरा मैंने तस्बीह खाने की सॉफ्टवेयर चाहिए उसका ऐलान किया, और अंग्रेजी का तर्जमा लाइव हो, पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं। आज भी एक माई आई, बच्चे को इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता था, यूरोप का पढ़ा हुआ बच्चा, पला हुआ बच्चा, वहीं पैदा हुआ, था पाकिस्तानी, उस बेचारे को इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता था। इसलिए یہ ذرا ہماری درخواستیں آپ ضرور قبول کریں گے. اور تسبیح خانے میں آنے والے حضرات اپنا بستر ضرور لائیں. تسبیح خانے میں قیام کرنے والے حضرات اپنا بستر ضرور ہمراہ لائیں موسم کے مطابق. یہاں 100% سہولت ہم نہیں دے سکتے, جتنی دی ہے اس پہ شکر گزاری کا جذبہ ہو, شکر گزاری کا جذبہ ہو. ابھی عشاء کی نماز ہوگی اور اس کے بعد باجماعت نماز پھر 6 نمبر نیچے ہال میں بھی ہوگی. جن کی جماعت رہ جائے تو وہاں شامل ہو سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تاشکند, بخارا, سمرقند, ازبکستان میں جنہوں نے سفر کیا یا معلومات رکھتے ہیں وہ ہمارے ٹیلنار کے موبائل پہ ہم سے رابطہ کریں, ان سے ہم معلومات لے لیں گے. تاشکند, بخارا, سمرقند کے جنہوں نے سفر کیا یا اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں. ہمارا انشاءاللہ روحانی اجتماع 28 نومبر کو شروع ہوگا اور اللہ کے فضل سے بروز اتوار. آگے ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی, کون سی ڈیٹ ہے, ڈیٹ بھول گئے. ڈیٹ کون سی ہوگی آگے اتوار کو؟ یکم دسمبر کو انشاءاللہ دعا ہوگی, وہیں حجویری محل میں ہی اجتماع ہوگا. ایک مجھے احباب کی ایسی جماعت چاہیے جو ابھی سے حجویری محل کے اجتماع کے معاملات کو, نظام کو صرف سوچنا شروع کر دے. ایک مخلصین کی جماعت ہو. میں نے عرض کی تھی ابھی درس دعا کے بعد نیچے 6 نمبر ہال میں ہمارے ایک ساتھی ہیں, وہ پہلے سے آپ کا انتظار کریں گے. وہ حضرات بیٹھ کے سوچیں, اللہ سے مانگیں, اس فکر کو اوڑھیں کہ یا اللہ اس اجتماع کے انتظامات تو ہم سے کروا دے, ہم صرف سوچنے کا ذریعہ بن جائیں. اور حجویری محل میں 2 عدد بڑے جنریٹر درکار ہوں گے بجلی کی سپلائی کے لیے, اس کے لیے بھی مخلصین 2 نفل حاجت کے پڑھ کے ابھی سے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ پاک وہ نظام غیب کے خزانے سے بنا دے. آئندہ سال انشاءاللہ نومبر کی 2ری شب جمعہ سے یہ 11 جمعراتوں والا عمل جو ہے شروع کریں گے. یہ صورت اخلاص والا 40,000 بہت زیادہ اللہ کا فضل ہے, مسائل حل ہوتے ہیں اور مشکلیں دور ہوتی ہیں. اور جو بھی آج تک اس میں شامل ہوا ہے اس کو کچھ نہ ملا ہو یہ یاد نہیں ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ تقریباً 24 جنوری بنتی ہے جس میں ہم 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے. تقریباً 24 جنوری جمادی الاول کی 3ری جمعرات بنتی ہے, شب جمعہ بنتی ہے. اور وہ تقریباً 24 جنوری بنتی ہے, چاند کے حساب سے 1-8 دن اوپر نیچے ہو جائے. یہ ہم انشاءاللہ یہاں بہت بڑا عمل ہوگا اور جس میں نسلوں کی کامیابی کے لیے عمل ہوگا. 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے. شب برات کا عمل ہر سال ہوتا ہے, 9-10 محرم کا ہر سال ہوتا ہے. آئندہ سال انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو یہاں درس ہوگا, مشکل کشا وظائف اور درود پاک کی محفل بھی ہوگی 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ تعالی. رمضان کا گزارنا 27ویں شب, عید الفطر, عید الضحیٰ کی نماز, وہ بھی مستقل یہاں ادا ہوتی ہے. حامیم لایون سارون, اب میں اپنے چندے پہ آ گیا ہوں. حامیم لایون سارون یہ مجھے چندہ ہے, میرا, میری نسلوں کا, میرے ساتھیوں کا, سارے تسبیح خانے کے نظام کا تصور کر کے 313 بار ضرور پڑھیں گڑ گڑا بھکاری بن کے اول آخر درود شریف, کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما, کفایت, کفالت, مدد فرما, عافیت اور برکت عطا فرما. اسی طرح یا حفیظ و یا سلام 11 بار یا 1 تسبیح بھی اسی نیت سے. انٹرنیٹ تسبیح خانے اور موتی مسجد میں بعض لوگ میری طرف اپنا تعلق جوڑ کر عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں, احتیاط کریں. فیس بک, نیٹ اور ای میل اور خط کے ذریعے اپنے مشاہدات, تجربات, روحانی, طبی ضرور لکھا کریں. خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن, چند ہفتے, چند مہینے گزارے ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات اپنی زندگیاں وقف کریں. یہاں پر خدمت کرنے والوں کو گفٹ, ہدیہ, بخشیش ہرگز نہ دیں. آپس میں ناطے, معاملات, لین دین نہ کریں. اور ذکر خاص کا کارڈ تسبیح خانے کی امانت ہے, ساتھ نہ لے جائیں, کہیں اس مقدس امانت میں خیانت نہ ہو جائے. شجرہ طیبہ اور منتخب احادیث اور آداب معرفت ہر گھر کی ضرورت ہے. روزانہ پڑھا کریں. روزانہ گھر بیٹھے فری روحانی و جسمانی ٹوٹکے حاصل کرنے کے لیے فالو اپ کری کا میسج لگائیں اور نیت کریں کہ آپ 11 بندوں کے موبائل پہ لگائیں گے, جس کو خیر پہنچائیں گے اللہ پہلے آپ کو عطا کرے گا. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں, اپنی جیبوں اور جوتوں کی حفاظت کریں, موبائل کی جیبوں کی حفاظت کریں, ہماری غفلت سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے. گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی پارکنگ میں تعاون کریں, یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی، وہی لیتے ہیں لیکن راستے بند نہ ہوں۔ مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، راستوں گلیوں میں عورتیں مرد جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں، اور جب لنگر شروع ہو تو اسی وقت ہی شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ پیسوں کا لین دین نہ ہو۔ آج ہی میرے پاس یہ صاحب بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آیا، میں ایسے تھا کاؤنٹر پہ بیٹھتا تھا، پھر بیچارہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہاں سے اس کو بھیج دیا، اس نے جا کے پیسے لیے۔ اب کہتے ہیں جب سے میں نے دیے ہیں میرے گھر برباد، جگہ جگہ خون اور میری پریشانی۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے کیا ہے، انہوں نے تو ہمدردی کی۔ کہتے ہیں مرشد کا حکم نہیں تھا، میرے ساتھ یہ ہوا، اور پتہ نہیں جس کو دیا ہوگا اس کا کیا بنا ہوگا۔ کہتے ہیں میرے اوپر جادو، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، پریشانیاں شروع ہو گئیں، بہت زیادہ پریشان ہیں بیچارے۔ تو اس لیے یہ چیز نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ چیز نہیں ہے، اور اس پہ احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب بیٹھ کے سورت اخلاص کا عمل بہت یقین سے، بہت درد سے، بہت توجہ سے، بہت دھیان سے، اور گڑ گڑا کے، صرف چند منٹ کرنا ہے، چند منٹ ہے، 10-12-15 منٹ بس، لیکن کوئی ایسا ہو جو گڑ گڑا کے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا اسم اعظم ذکر خاص ہوگا، اور ذکر خاص کے بعد اسم اعظم سلطان الاذکار کا آج ذکر ہوگا، کیونکہ نوچندی جمعرات ہے، اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، حاضری قبول فرمائے۔ یقین جانیے جھولے اب جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اس تسبیح خانے کو آباد اور شاد رکھے، اس کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی آباد اور شاد رکھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔
پہلے انشاءاللہ سلطان الاذکار ہوگا، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ، اس کے بعد پھر دعا ہوگی، اپنے لیے مانگیں گے، پوری امت کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ۔ ساتھی بجلی بند کر دیں۔
افضل الذکر لا الہ
اللہ
الا اللہ
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا الله ہم سب کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما کامل ایمان کامل اخلاص کامل اخلاق عطا فرما اور کامل برکت اور عافیت عطا فرما کامل برکت اور عافیت عطا فرما کامل برکت اور عافیت عطا فرما دل کی دنیا بدل دے مولا جذبوں کی دنیا بدل دے آقا ہمارے ہر مسئلے کو حل فرما ہماری ہر مشکلیں دور فرما ہر پریشانی دور فرما اے اللہ کامل ایمان دے دے اور ایمان کی سچی لذت دے دے اور ایمان کا سچا مزہ دے دے نماز میں تلاوت دے دے اور قرآن سے محبت دے دے اے اللہ کالے جنات سے ہماری حفاظت فرما کالی دنیا سے ہماری حفاظت فرما مولا ایک تو تو نے ہمارے پردے ہی رکھ دیے ہمیں کچھ دیکھ نہیں سکتے اے اللہ ہم کچھ بے بس ہیں سب کچھ ہمارے پاس کچھ نہیں تو اب اس کی حفاظت خود فرما اس کی کفایت خود فرما اس کی کفالت خود فرما یا اللہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو سب کچھ کر سکتا ہے تو غیب سے ہماری حفاظت فرما تو غیب سے ہماری کفایت فرما تو غیب سے ہماری مدد فرما اے اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما میرے وطن کی حفاظت فرما وطن کے گھروں کی حفاظت فرما چھاونیوں چھاونیوں کچہریوں ایوانوں کی حفاظت فرما بادشاہوں وزیروں فقیروں غریبوں امیروں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایٹمی نظام کی حفاظت فرما بیٹیوں کے آنچل کی حفاظت فرما ہماری نظروں کی کانوں کی تنہائیوں کی حفاظت فرما ہمیں اپنی جناب سے غیب سے غیب کے خزانے سے عطا فرما ہمیں اپنی جناب کے غیب سے خزانے سے عطا فرما بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما یا اللہ کتنے بے گھر ہیں روتے ہیں کتنے بے در ہیں مولا بے اولادوں کو اولاد عطا فرما تیری جناب سے اولاد ملے گی اور ان کو بیٹے دے دے ان کی نسلیں دے دے ان کو عزتیں دے دے اپنے علم سے علم دے دے اپنے علم سے علم دے دے اے اللہ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں تو کر دے مولا ان کی شادیوں کی رکاوٹیں دور فرما ان کی شادیوں کی رکاوٹیں دور فرما ہمارے گناہوں کی وجہ سے سب کچھ ہے اللہ تو غیب سے مدد فرما عافیت فرما غیب سے مدد فرما عافیت فرما غیب سے مدد فرما عافیت فرما بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما دنیا بھی آخرت بھی خیر بھی برکت بھی عزت بھی فضل بھی کرم بھی رحمت بھی رزق بھی اور اعلی عبادت بھی روح بھی روحانیت بھی وجد بھی وجدان بھی اپنی رحمت عطا فرما مدینے والے کا دیدار کرا دے کملی والے کا دیدار کرا دے کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کو مولا تو اپنے روزے کی زیارت حبیب کی نہ کرا اور ان کو حج پہ مولا حاضریاں دلوا عمروں کی حاضریاں دلا ادب احترام کے ساتھ بار بار اے اللہ حاضری کی توفیق عطا فرما توفیق عطا فرما توفیق عطا فرما بیماروں کو شفا دے دے قرضداروں کے قرضے دور کر دے جو بیماریوں پریشانیوں ہسپتالوں میں ہیں اے اللہ ان کو صحت یاب کر دے ان کو صحت یاب کر دے ان کو صحت یاب کر دے بے بسوں کی بے بسیاں دور کر دے بے بسوں کی بے بسیاں دور کر دے ہماری مشکلیں حل فرما ہماری پریشانیاں دور فرما ہمیں دنیا کی بھی خیریں عطا فرما ہمیں آخرت کی بھی خیریں عطا فرما اور دنیا آخرت کی ذلتوں علتوں اور قلتوں سے بچا اور ذلت علت اور قلت سے بچا کبھی آزمائش سے بچا ہر فتنے سے بچا، تسبیح خانی کی غیب سے حفاظت فرما، تسبیح خانی کی مدد فرما، تسبیح خانی کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، عافیت سے حجویری محل کی ساری ضرورتیں پوری فرما. اور اے اللہ، تو دنیا میں جہاں بھی خدمت کرنے والے ہیں، چاہے وہ جس شعبے کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، اور ان کی نسلوں کو دنیا آخرت کی عزتیں، برکتیں، مال اور خیریں عطا فرما. اے اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا، ان کی ضرورتیں پوری فرما، جنات کی بھی مدد فرما، انسانوں کی بھی مدد فرما، اور پوری امت کے غیر مسلموں کو مدینے والے کی غلامی عطا فرما. ہمارے دل میں ان کے لیے نفرت کے جذبے ختم کر دے، رواداری اور محبتیں عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم. یا اللہ، دنیا کے جس کونے میں جہاں کوئی بیٹھا اور تسبیح خانے کی آمین کے ساتھ آمین کہہ رہا، ان سب کی غیب سے آمین پوری فرما اور مشکلیں حل فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ نکاح بھی ہے آج،
حال کے دائیں بائیں کناروں کے بقیہ نماز مکمل کر لیں، یہاں ممبر کے سامنے اس کے نزدیک بقیہ نماز نہ پڑھیں، بلکہ دائیں بائیں حال میں کناروں پہ ہو کے بقیہ نماز مکمل کر لیں. یہاں اس وقت مجلس مزومی ہوگی. آپ نے درس میں یا آپ کی میگزین میں کوئی طبی عمل، کوئی روحانی عمل سنا ہو، آزمایا ہو، کسی کو بتایا ہو، اس کا مشاہدہ ہو، تو یہاں صرف اعمال کا فائدہ، مشاہدہ، تذکرہ، اس طرح سے روحانی کو طبی ٹوٹکا ہو، آپ نے آزمایا ہو، کسی کو بتایا ہو، اس کا مشاہدہ ہو، تو صرف اس کا تذکرہ ہوگا. ذاتی سوال جواب کی مجلس نہیں ہے، یا کوئی خواب، اس کی تعبیر، ایسی کوئی ترتیب نہیں، بلکہ صرف اعمال کے تذکرے، فائدے، مشاہدے. اور اس کے اختتام پر ایک حسب معمول بیعت کا عمل ہوگا. جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہو سکیں گے، اور خواتین کی طرف بھی مائک چل رہے ہیں، تو وہاں بھی خواتین بھی، مائیں بہنیں بھی بیعت ہو سکتی ہیں. اس وقت میں جب بیعت کے کلمات دہرائے جائیں گے تو وہ بھی بیعت ہو سکیں گی، اور جو حضرات ساتھی پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی اس میں دوبارہ شریک ہو سکیں گے. اور اس کے علاوہ اور نکاح بھی ہے اس کے مجلس کی بات، اس میں نکاح بھی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ شرکت کی دعوت ہے. نکاح والے حضرات یہاں نزدیک تشریف لے آئیے.
جی کون بتائے گا؟ یہاں تشریف لائیں جو بتائیں گے اعمال کے نفع فائدے. بس تین چار پانچ حضرات آئیں، زیادہ نہ آئیں. ہاں جی، ایک آ گیا، اور دو اور تین آ جائیں، قریب آ جائیں. ہاں جی، دو تین اور حضرات آ جائیں جو اعمال کے نفع فائدے بتائیں، اللہ کے خزانوں سے کیا ملا، کیا پایا. رب بہت خوش ہوتا ہے جو شکر گزاری کے جذبے سے بتائے. جی بتائیں جی.
السلام علیکم. محمد یوسف پیچوں گی، امر سے دلہا اور سن. میرے سے جی کافی قرضہ چڑھ گیا سی، تو دا کوئی حال نہیں سی نکل رہا. مینو کسی نے دسیا کہ دو من مول خزانے لائے تو پڑھ. میں کتوں ملیں گی نہ کتوں بھی ملے گا، کافی دکانوں تو کوشش کرتا رہا لیکن کتاب نہ ملی. اخیر نیٹ تو کوشش کی تھی، نیٹ تے کوشش کرن نال دو انمول خزانے بھی مل گئے، تو وہ حضرت صاحب کا خطاب بھی مل گئے. دو انمول خزانے تو میں اس وقت نہ پڑھ سکیا، لیکن خطاب کے وچوں مینوں ایک برکت والی سائدی کا وظیفہ مل گیا، سورہ کوثر 129 بار صبح شام پڑھنا. وہ میں پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا جی، کو ڈھائی تین سال کے 8.5 لاکھ روپیہ قرضہ سی وہ میرا اتر گیا. پرسوں ان شاء اللہ میں قرضے تو خارج مکمل ہو گیا، میں 2.5 سال کے دوران سہجی والا عمل پڑھ دیا پڑھ دیا. یہ دوران ہی پچھلے سال تک واقعہ کہ میری بیٹی سی، تو وہ ایک بیٹی ہے گوں، تو کچھ گھر کے لڑائی جھگڑا آیا جی، وجہ تو اور اس کے گھر آ گئی. سارے گھردیا کی سلاح یہی سی کہ اِسی طلاق لے لینی، بیٹی واپس نہیں بھیجنا. اور جیسے کش مکش میں ایک سال تو 3 مہینے گزر گئے. نیٹ تھی پڑھدہ پڑھدہ ایک دن میں دیکھا جی تقریر سنیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے بندے کے اتنے، اگر جی وہ چک جائے تو عذاب ازمائش بن کے ٹل جاتا ہے، اگر آکڑ جائے تو عذاب جڑا بندے کو غرق کر دینا. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਨਾ ਹਬਲਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਵਾਜ ਨਾ ਵਜ਼ੁਰਿਯਾਤ ਨਾ ਕੁਰਾ ਤਾਜੁ ਨਿਵਾ ਜਲ ਨਾ ਲਿਲ ਮੁਤਾਕੀਨਾ ਇਮਾਮਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਸਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਇਆ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ, ਰੱਬਾ ਨਾ ਹਬਲਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਜ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਦੀ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਲੀ ਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਸਿਪ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਮਰਜਾਨ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਅਖੀਰ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬਾ ਨਾ ਹਬਲਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਜ ਨਾ ਵਜ਼ੁਰਿਯਾਤ ਯਾਦ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਰਾ ਤਾਜ ਨੀ ਵਾਜਾਲ ਨਾ ਲੇ ਮੁਤਾ ਕੀ ਨਾ ਇਮਾਮ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਅਹਿਸਨ ਅਲ ਜਜ਼ਾ।
ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਬਤਾਏ।
السلام علیکم، رضوان لاہور سب بازار سے تعلق ہے میرا۔ بسم اللہ والے تعویذ کے بارے میں سنا تھا آپ کے درس میں حضرت سی سے، مجھے نا ٹائیفائڈ ہو گیا تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ یورک ایسڈ کا بھی مسئلہ ہے، جو کمزوری کافی ہو گئی تھی، صبح جب سویا اٹھتا تھا میں تو کمر درد جوڑ درد آتا تھا، کہ واش روم جاتا تھا تو بیٹھتا تھا سیٹ پہ جا کے اٹھتے ہوئے بڑی پرابلم ہوتی تھی، تو تعویذ بسم اللہ کا بنایا، وہ میں نے منہ میں رکھ کے چوسا اور اس کے بعد نکل لیا، اور اس سے کافی فائدہ ہو گیا، جو مجھے دردیں ہوتی تھیں جوڑ میں وہ بالکل ہی ختم ہو گئی ہیں، درد وغیرہ جو بھی ہوتی تھی اب بالکل ٹھیک ہوں، کوئی درد وغیرہ کوئی نہیں ہے جوڑ وغیرہ میں۔ دوسرا میرا تعلق ہے ٹریفک پولیس سے، تو آگے پیچھے جو 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے کھڑے ہو کے ہم ٹریفک مینیج کرتے رہتے تھے، وہ پھر جا کے ہوتی تھی۔ اب میں نے آپ کی ادھر سورہ الانعام نشرا کا ایک عمل پڑھا تھا کہ سورہ الانعام جب بھی ٹریفک پھنسی ہو تو سورہ الانعام نشرا پڑھنی شروع کر دیں، وہ ٹریفک کلیئر ہو جائے گی۔ اب جب بھی کھڑا ہوتا ہوں وہ پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے ود ان تھوڑے سے منٹس میں وہ ہو جاتی ہے، جو 3-3 گھنٹے کا کام تھا وہ 5-6 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ سبحان
جو بیعت عمل ہوگا، جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت ہو سکیں گے، یہ چادر کھول لیں دور تک ساتھی لے رہے ہیں۔ کھول لیں ساتھی، دور تک لے جائیں، اس کو اور لے لیں، پھیلا بھی لیں جتنا پھیلا سکیں، باقی ساتھی اگلے ساتھی کے کندھے بازو کے ہاتھ رکھ لیں گے، بیعت میں بیعت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور خواتین کی طرف بائیں بہنیں بھی اب بیعت کر سکتی ہیں، اس وقت بیعت کے کلمات دہرائے جائیں گے، بیعت کے کلمات دہرانے کی بیعت ہو جائے گی، جو حضرات ساتھی پہلے سے بیعت ہیں وہ دوبارہ شریک ہو سکتے ہیں۔
جو عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، لا اله الا الله محمد رسول الله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ يا الله میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول دعا مانگ۔ آمین برحمتک۔ بیعت دراصل توبہ ہے کہ یا اللہ جو پچھلی زندگی گزری اس میں ندامت استغفار، آئندہ زندگی تیرے حبیب کملی والے کی غلامی میں گزاروں گا۔ 3 تسبیحات کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نماز با جماعت کا اہتمام، اور سب کو زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو اپنے معاملات جائز ناجائز، حلال حرام،
اس پہ ہم نظر رکھیں، اپنے معاملات پہ زیادہ نظر رکھیں اور درس میں شامل ہوتے رہیں. میں بھی یاد دہانی کا محتاج ہوں، آپ بھی یاد دہانی کے محتاج ہیں، درس میں شامل ہوتے رہیں. اللہ مبارک کرے، قبول کرے. بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جو نکاح مسجد میں کیا جائے، بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جو سادگی کے ساتھ ہو، اور بہترین ولیمہ وہ ہوتا ہے جس میں غریبوں کو شامل کیا جائے، چھوٹے لوگوں کو، غریبوں کو، جن کو کوئی نہیں پوچھتا. بہترین ولیمہ وہ ہوتا ہے جس میں اس میں شامل کیا جائے. میرے آقا کملی والے کی اس ولیمے کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں، اور فرمایا بد دعا ہے اس ولیمے کے ساتھ جس میں غریبوں کو شامل نہ کیا جائے. سوچیں جہاں میرے کملی والے کی بد دعا ہو گئی تو وہ شادی کیسے آباد اور شاد ہوگی. جی، شادی کا خطبہ ہوگا نکاح کا.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال النبي عليه السلام في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. أي محمد مبشر طيب محمد طيب. میں نے ان حاضرین مجلس اور گواہوں کی موجودگی میں 5,000 روپے مہر پر آپ کا نکاح عائشہ سلیم دختر محمد سلیم سے کر دیا.
جی قبول ہے.
بھائی محمد محمد مبشر طیب بل محمد طیب، میں نے ان حاضرین مجلس اور گواہوں کی موجودگی میں آپ کا نکاح 5,000 روپے مہر پر عائشہ سلیم دختر محمد سلیم سے کر دیا.
میں نے قبول کیا.
ان کا کاغذ کہاں ہے؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 20 سال.
بھائی عمر حیات بند حاکم علی، میں نے حاضرین وہاں کی موجودگی میں 5,000 روپے حق مہر پر آپ کا نکاح ثنا اشرف دختر محمد اشرف سے کر دیا.
میں نے قبول کیا.
بھائی عمر حیات بند حاکم علی، میں نے ان حاضرین مجلس اور گواہوں کی موجودگی میں 5,000 روپے مہر پر آپ کا نکاح ثنا اشرف دختر محمد اشرف سے کر دیا.
قبول کیا. میں نے قبول کیا.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ان جوڑوں کو خیریں، عافیتیں اور برکتیں عطا، دل کا صدا جوڑ دے، محبتیں اور پیار دے، عافیتیں اور پاکیزگیاں عطا فرما. ان کو بیٹے، نعمتیں، عزتیں اور خیریں، اور اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا کر دیں. اللہ سب کی شادیوں میں سادگی عطا فرما، ایمان اور اخلاق اور اخلاص عطا فرما، اور اس شادی کو رزق، وسعت اور ایمان کی برکت کا ذریعہ بنا. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.